आगे सबक देखिए भाई। काला व यक्सिमुल इमामुल गनी मता फयुखरिजु खुमुसहा लिकौलिही तआला फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल इस्तस्नल खुमुसा व यक्सिमु अरबअतल अखमासि बैनल गानिमीन लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु कसमहा बैनल गानिमीन। भाई गनीमतों और उनकी तकसीम का बाब चल रहा है भाई, और साहिब हिदाया ने यहां कई बहसें फरमाई इस बाब के अंदर। पहली बहस के अंदर गनीमतों की तफसील बयान फरमाई कि गनीमतें दो किस्म पर हैं, कुछ मनकूली हैं और कुछ गैर मनकूली हैं, और फिर हर एक का हुक्म बतलाया। और फिर इसी तरह कैदियों की तफसील भी बयान फरमाई कि इमाम को क्या क्या इख्तियार है उन कैदियों के सिलसिले में। और फिर साहिब हिदाया ने यह भी बतलाया कि अगर गनीमतों में से बाज़ चीजों को मुसलमान दारुल इस्लाम मुंतकिल नहीं कर सकते तो फिर इमाम उनको जाया कर देगा ताकि वो कुफार के काम भी न आए भाई। और उसके बाद दूसरी बहस हमने पढ़ी थी इस बाब के अंदर कि गनीमतों को कहां पर तकसीम किया जाएगा। तो साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि इंदल अहनाफ गनीमतों को दारुल इस्लाम मुंतकिल करने के बाद तकसीम किया जाएगा, जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दारुल हर्ब के अंदर भी गनीमतों को तकसीम किया जा सकता है। और उसके बाद तीसरी बहस में साहिब हिदाया ने यह जिक्र फरमाया कि गनीमत का मुस्तहिक कौन है और कौन नहीं है। साहिब हिदाया ने बतलाया कि हमारे नजदीक गनीमत के मुस्तहिक होने का सबब जो है वो मुजावजत है, यानी दारुल इस्लाम की सरहद अबूर करना दारुल हर्ब की तरफ जिहाद की नीयत से, ये है गनीमत का जाहिरी सबब। जबकि इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक लड़ाई में हाजिर होना यह है गनीमत का सबब। तो हमारे नजदीक कातिल और मददगार जो हैं दोनों माले गनीमत के मुस्तहिक हैं, लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ तिजारत की नीयत से लश्कर के साथ गया है तो वो गनीमत का मुस्तहिक नहीं है। और साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर इमाम के पास बारबरदारी के जानवर न हों तो फिर वो इन गनीमतों को बतौर अमानत के गाजियों में तकसीम कर दे ताकि वो इसको दारुल इस्लाम मुंतकिल करें, और फिर वहां उनसे इन गनीमतों को दोबारा जमा कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इसकी तकसीम की जाएगी। और साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि दारुल इस्लाम जब गनीमतें मुंतकिल हो जाएंगी तब ये गाजी इन गनीमतों के मालिक बनेंगे, तो उसके बाद अगर किसी गाजी का इंतकाल होता है तो उसका हिस्सा उसके वारिसों को मिलेगा। लेकिन दारुल इस्लाम मुंतकिल करने से पहले दारुल हर्ब के अंदर गाजियों का गनीमतों के अंदर सिर्फ हक आया है, वो इसके मालिक नहीं बने। लिहाजा अगर दारुल हर्ब में किसी गाजी का इंतकाल हो जाता है तो उसका हिस्सा उसके वारिसों को नहीं मिलेगा भाई। और उसके बाद चौथी बहस हमने पढ़ी थी कि दारुल हर्ब के अंदर माले गनीमत की किन चीजों से नफा उठाना जायज है और किन चीजों से नफा उठाना जायज नहीं। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि वो चीजें जिनको गाजी अपने साथ रखता है, जैसे असलहा कपड़े सवारी वगैरह, ये तो गाजी अपने साथ लेकर चलता है, लिहाजा माल गनीमत में से इन चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, इल्ला ये कि गाजी को उसकी हाजत और जरूरत हो, यानी लड़ाई में उसके कपड़े फट गए हैं या उसका असलहा टूट गया है तो फिर जरूरत और हाजत की वजह से वो ये चीजें इस्तेमाल कर सकता है। तो मालूम हुआ असलहा कपड़े और सामान वगैरह सिर्फ हाजत की सूरत में इस्तेमाल करने की इजाजत है, जबकि अपने जानवरों की घास और चारा वगैरह है या इसी तरह अपनी खुराक जो है उसकी जरूरत और हाजत है, क्योंकि मुजाहिदीन दारुल हर्ब में हैं और यहां पर चारे का या खुराक का पहुंचाना मुमकिन नहीं, तो लिहाजा वहां पर खुराक और चारा इस्तेमाल करना जायज है, वो इन गाजियों के लिए मुबाह है भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने यह मसला भी जिक्र फरमाया कि अगर दारुल हर्ब वालों में से कोई शख्स कैदी बनाए जाने से पहले ही मुसलमान हो गया तो इसने अपनी जान भी महफूज कर ली और इसका वो मनकूली सामान जो इसके कब्जे में है उसको भी महफूज कर लिया, इसी तरह इसकी जो नाबालिग औलाद है वो भी इसके ताबे होकर मुसलमान शुमार होगी, वो भी महफूज हो गई, और इसी तरह अगर इसका कोई माल किसी मुसलमान या जिम्मी के पास बतौर अमानत के है तो वो माल भी महफूज हो गया। लेकिन अगर इसकी जमीन जायदाद वगैरह है दारुल हर्ब के अंदर तो वो माले गनीमत में शुमार होगी। वजह यह है कि इसकी जमीन वगैरह दारुल हर्ब में है और दारुल हर्ब तो दारुल हर्ब वालों और उनके बादशाह के कब्जे में है, और नीस शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक जमीन और जायदाद वगैरह पर जो कब्जा होता है वो हकीकतन नहीं होता, सिर्फ हुक्मन होता है, और हुक्मन कब्जे का तो दारुल हर्ब में कोई एतबार नहीं है, लिहाजा इसकी गैर मनकूली जायदाद जो है वो माले गनीमत में शुमार होगी भाई। और अगर इसकी बीवी है और वो गैर मुस्लिमा है या इसी तरह इसकी बालिग औलाद है और वो कुफार हैं तो वो सब भी माले गनीमत में शुमार होंगे। और अगर इसके कब्जे में कुछ गुलाम हैं तो वो गुलाम अगर इसके कब्जे में है तो फिर वो भी महफूज हैं, लेकिन अगर इसका कोई गुलाम अहले हर्ब की तरफ से लड़ने आता है तो फिर वो मालिक का चूंकि नाफरमान है लिहाजा वो अहले हर्ब के हुक्म में है, और अगर वो भी पकड़ा गया तो वो माले गनीमत में शुमार होगा भाई। जबकि इसके मुकाबले में अगर इस मुसलमान होने वाले का कोई माल किसी हर्बी के पास है, चाहे बतौर अमानत के है चाहे बतौर गसब के है, तो ये माले गनीमत है क्योंकि हर्बी के कब्जे का कोई एहतराम नहीं है। और इसी तरह अगर इस मुसलमान होने वाले का कोई माल किसी मुसलमान या जिम्मी ने गसब किया था तो वो भी माले गनीमत में शुमार होगा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि ये मुसलमान होने वाले का वो माल जो किसी मुसलमान या जिम्मी के कब्जे में है बतौर गसब के, वो माले गनीमत में शुमार नहीं। वजह यह कि यह शख्स जब मुसलमान हो गया तो इसकी जान मासूम और महफूज हो गई, और माल जो है वो तो जात के ताबे होता है तो इसका माल भी महफूज हो गया। जबकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि माल जो है माल मासूम और महफूज नहीं है, लिहाजा वो जब मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो वो माले गनीमत में शुमार होगा। और साहिबैन ने जिक्र किया था कि इस्लाम की वजह से इसकी जात मासूम और महफूज हो गई, तो उसका भी जवाब दिया कि इसकी जात जो है इस्लाम की वजह से मासूम और महफूज नहीं हुई, चुनांचे इसीलिए दारुल हर्ब के अंदर अगर इस मुसलमान होने वाले हर्बी को किसी मुसलमान या जिम्मी ने कत्ल कर दिया तो उसकी वजह से किसास या दियत नहीं आएगी। मालूम हुआ इसको इस्मत मुतकविमा अभी भी हासिल नहीं हुई, इसको इस्मत मुतकविमा तब हासिल होगी जब ये दारुल इस्लाम मुंतकिल हो जाएगा, या इस सारे इलाके को मुसलमान फतह कर लें और ये सारा दारुल इस्लाम बन जाए तो फिर इस सूरत के अंदर इसको इस्मत मुतकविमा हासिल हो जाएगी, यानी अब इसकी जान कीमत वाली हो गई। अगर इसको कोई कत्ल करेगा तो उसकी वजह से किसास या दियत आएगी, लेकिन उससे पहले इसको इस्मत मुतकविमा हासिल नहीं है। इस पर इश्काल होता है कि अगर इस्लाम की वजह से इस आदमी की जान मासूम और महफूज नहीं हुई फिर तो इसका कत्ल जायज होना चाहिए, लेकिन आप फरमाते हैं कि इसका कत्ल भी जायज नहीं। तो उसका भी जवाब दिया था कि ये शख्स जब इस्लाम ले आया तो अब इसके साथ तआरुस करना हराम हो गया, इससे पहले इसके साथ तआरुस करना और इसे कत्ल करना जायज था इसके शर की वजह से, और वो शर इसको आरिज हुआ था हर्बी होने की वजह से कि ये हर्बी था, ये इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन था, तो जब ये मुसलमान हो गया तो इसका शर खत्म हुआ, जब शर खत्म हुआ तो अब इसके साथ तआरुस नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक है इंसानी जान और एक है माल। इंसानी जान के अंदर असल जो है हुर्मत है, किसी इंसान के साथ तआरुस नहीं किया जा सकता, कत्ल नहीं किया जा सकता। वजह यह कि इंसानी जान मासूम है क्योंकि अल्लाह ने इसको मुकल्लफ बनाया है, यानी इसके लिए अल्लाह ने अहकाम नाजिल फरमाए हैं कि उन अहकाम पर चले और जिंदगी गुजारे, और इन अहकाम पर वो तभी अमल कर सकता है वो जब वो जिंदा रहे, जब वो बाकी रहे, और ये तभी जिंदा रह सकता है और अहकाम पर अमल कर सकता है जब इसके साथ तआरुज हराम हो, इसको कत्ल करना हराम हो। तो इस्लाम की वजह से इसका शर खत्म हुआ, लिहाजा अब इसको कत्ल करना जायज नहीं। मैंने आपको बतलाया था कि इस्मत दो किस्म पर है, एक इस्मत मुअस्सिमा है और एक इस्मत मुतकव्विमा है। तो यह शख्स जो मुसलमान हुआ है और दारुल हर्ब में है, इसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो गई, यानी अगर कोई इसके साथ तारुस करेगा, इसे कत्ल करेगा, इसे नुकसान पहुंचाएगा, तो वह गुनाहगार होगा। लेकिन इसको इस्मत मुतकव्विमा हासिल नहीं है, वो दरअल इस्लाम में इसे हासिल होगी। इस्मत मुतकव्विमा का माना यह है कि इसके कत्ल की वजह से किसास या दियत वाजिब होगी भाई। तो लिहाजा मालूम हुआ जब यह शख्स मुसलमान हो गया तो इसका शर दूर हुआ, जब शर दूर हुआ तो इसकी जान मासूम हो गई, इसको इस्मत मुअस्सिमा हासिल हो गई। जबकि इसके मुकाबले में जो माल है उसको तो पैदा ही इसलिए किया गया है ताकि उसको खर्च किया जाए, उसके जरिए अपनी जरूरतें पूरी की जाएं, लिहाजा मालूम हुआ माल जो है वह मासूम और महफूज नहीं है, वह मुबाह है, जिसके कब्जे में भी आ जाए वह उसका मालिक बन जाता है। और यहां पर ये जो शख्स मुसलमान हुआ है और इसका माल जो है मुसलमान या जिम्मी ने गसब किया था, तो उस माल पर ना तो इस शख्स का हकीकतन कब्जा है और ना हुक्मन कब्जा है। हकीकतन कब्जा इसलिए नहीं क्योंकि जाहिर सी बात है वो माल इसके कब्जे में ही नहीं है, वो तो उस गासिब के कब्जे में है, तो हकीकतन भी इसका कब्जा नहीं और हुक्मन भी इसका कब्जा नहीं है क्योंकि वह गासिब का कब्जा वह मालिक का कब्जा नहीं है, वह मालिक का नाइब नहीं है। तो ना इस माल पर इसका हकीकतन कब्जा और ना हुक्मन कब्जा, लिहाजा यह माले मुबाह है, यह मुसलमानों के हाथ आ गया तो यह माले गनीमत शुमार होगा। और उसके बाद साहिब हिदायत ने जिक्र फरमाया था कि जब मुसलमान गाजी दारुल इस्लाम मुंतकिल हो जाएं तो उनके पास अगर कोई जायद चारा या जायद खाना वगैरह है तो अब वो इनको माले गनीमत में वापस करना पड़ेगा भाई। तो अगर माले गनीमत तकसीम नहीं हुआ तो उसको माले गनीमत में वापस कर देंगे, और अगर माले गनीमत तकसीम हो चुका है तो अगर वो गाजी मालदार है जिसके पास ये माल बचा हुआ है तो वो इस चीज को फुकारा पर सदका कर दे, और अगर वो जरूरतमंद है वो गाजी तो फिर वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है भाई। और अगर दारुल इस्लाम मुंतकिल होने के बाद उन चीजों में से बास चीजों को इन्होंने इस्तेमाल कर लिया था तो फिर अगर वो शख्स मालदार था तो उसकी कीमत जो है वो उस असल के कायम मकाम हो जाएगी। तो लिहाजा अगर माल गनीमत अभी तकसीम नहीं हुआ तो उसकी कीमत वो माल गनीमत में जमा करवा देगा, और अगर माल गनीमत तकसीम हो चुका है तो फिर वो कीमत फुकरा पर सदका कर देगा। अब आइए आज के सबक पर। फसलुन फी कैफियतिल किस्मा, ये फसल है तकसीम की कैफियत के बयान में कि माल गनीमत कैसे तकसीम किया जाएगा। भाई ये बात चल रहा है गनीमतों का और उनकी तकसीम का, और यहां अब इस फसल में अब वो तकसीम का बयान फरमाएंगे साहिब हिदाया भाई। तो कहते हैं फसलुन फी कैफियतिल किस्मती, ये फसल है माल गनीमत की तकसीम के तरीके के बयान में कि किस तरह माल गनीमत को तकसीम किया जाएगा। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ويقسم الامام الغنیمۃ, کہ امام جو ہے وہ غنیمت کو تقسیم کرے گا, فیخرج خمسہا, تو اس میں سے خمس نکال لے گا, اس مال غنیمت کا خمس یعنی پانچواں حصہ نکال لے گا, لقوله تعالی, اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, بھئی حاشیے میں آیت کا اور حصہ بھی ذکر ہے, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, वालमू, और तुम जान लो, अन्नमा गनीम तुम मीन शईन, के जो कुछ तुम्हें गनीमत के अंदर हासिल हो, फअन्नलिल्लाही खुमुसहू वलिर्रसूली, तो उसका पांचवां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, वलिदिल कुर्बा, और पैगंबर के रिश्तेदारों के लिए है, वल यतामा, और यतीमों के लिए है, वल मसाकीनी, और मसाकीन के लिए है यानी जो फुकारा हैं उनके लिए है, वबनी सबीली, और मुसाफिरों के लिए है, इब्नु सबील भाई रास्ते का बेटा, रास्ते का बेटा मुसाफिर को कहते हैं अरबी जुबान में, मुसाफिर की कुनियत है क्योंकि वो रास्तों पर सफर करता है तो उसको अरबी में इब्नु सबील कहते हैं भाई। तो देखो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला खुमुस के मसारिफ बयान फरमा रहे हैं कि जो कुछ तुम्हें गनीमत के अंदर हासिल हो तो उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्तेदारों के लिए है, यतीमों मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। तो इस आयत के अंदर खुमुस के पांच मसारिफ बयान हुए। एक हिस्सा है अल्लाह और उसके रसूल का, एक हिस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों का, एक हिस्सा है यतीमों का, एक हिस्सा है मसाकीन का यानी फुकारा का, और एक हिस्सा मुसाफिरों का है। बात समझ में आ गई। तो पांच मसरफ यहां पर जिक्र हुए। साहिबे हिदाया आपको बतलाएंगे कि यहां आयत के अंदर अगरचे पांच मसारिफ जिक्र हैं लेकिन खुमुस के अब तीन मसरफ बाकी रह गए हैं। एक हिस्सा तो अल्लाह और उसके रसूल का था, और यहां आपको बतलाएंगे कि ये जो अल्लाह के नाम को जो जिक्र किया गया ये सिर्फ बतौर बरकत के जिक्र किया गया, क्योंकि अल्लाह को माल की हाजत नहीं है। तो एक हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वफात पा चुके तो उनका हिस्सा साकित हो गया, उनका हिस्सा साकित हो गया। और एक हिस्सा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों का, और वो उनका हिस्सा भी इसलिए था क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के मदद करते थे। याद रखो उस जमाने के अंदर अरबों के अंदर कौमी गैरत बहुत ज्यादा थी। वो अरब जो है किसी को इजाजत नहीं देते थे कि हमारी कौम के किसी आदमी को हाथ लगाएं। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया दीन लेकर आए और कुफार जो है वो इनके सख्त जानी दुश्मन बन गए, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश करे। वजह यह कि वो जानते थे कि अगर हमने इनको नुकसान पहुंचाया तो इनका पूरा कबीला हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो लिहाजा वो और तकलीफें तो पहुंचाते थे लेकिन कत्ल करने की हिम्मत नहीं होती थी। और फिर आखिर में उन्होंने मीटिंग की भाई, और उसमें शैतान भी एक बूढ़े सरदार की सूरत में शरीक हो गया। और फिर वहां पर उस शैतान ने मशवरा दिया कि सारे कबीलों से एक एक नौजवान को चुन लो, तो इस तरह मिलकर मोहम्मद को कत्ल कर दो। इनका कबीला जो है वो एक कबीले का तो मुकाबला कर सकता है, लेकिन तमाम कबीले जब मिलकर कत्ल करेंगे तो वो सबका मुकाबला तो नहीं कर सकते। चुनांचे फिर सारे कबीलों में से एक एक नौजवान लिया गया, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे घर के अंदर, तो वो आए और उन्होंने उस जगह को घेरे में ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए तिला मिली, तो आपने अपनी जगह पर हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को लिटाया भाई, और आप उस घर से निकले कि उनमें से किसी को नजर नहीं आ रहे थे। चुनांचे आपने मिट्टी उठाई और वो जो नौजवान जो वहां घेरा डालकर खड़े थे उन सबके सरों पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली, और फिर उसके बाद हजरत बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर हिजरत फरमा गए मदीना मुनव्वरा की तरफ। भाई बात समझ में आ गई। तो लिहाजा ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों का हिस्सा था वो हुजूर अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत करने की वजह से था। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम वफात पा गए तो हुजूर का हिस्सा भी साकित हुआ, और वो रिश्तेदारों की जो मदद थी वो भी अब क्या हो गई, खत्म हो गई। तो अब उनका हिस्सा भी साकित हो गया। अब जो खुमुस का मसरफ है वो सिर्फ यतीम मिस्कीन और मुसाफिर हैं। बात समझ में आ गई। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं फयो खुरी जो खुमुसाहा कि उस माल गनीमत में से इमाम खुमुस निकाल लेगा, लिकौल ही ताला अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से, फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर रसूल कि अल्लाह के लिए है उस माल गनीमत का पांचवां हिस्सा और उसके रसूल के लिए है। इस्तस्नल खुमुसा अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना फरमाया खुमुस का, यानी माले गनीमत के पांचवें हिस्से को अल्लाह ने निकाल लिया। ये गाजियों का हिस्सा नहीं है, बाकी चार खुमुस जो हैं वो तो गाजियों में तकसीम होंगे, लेकिन इस खुमुस का अल्लाह ने इस्तिस्ना फरमाया। तो यहां आयत के अंदर तो कहीं इस्तिस्ना नहीं, हरफे इस्तिस्ना इल्ला वगैरह जिक्र नहीं। तो मुराद इस्तिस्ना से यहां मुराद है इखराज भाई, के माले गनीमत में से पांचवां हिस्सा अल्लाह ने निकाल लिया, जुदा कर दिया कि ये गाजियों का हिस्सा नहीं है, इसके ये मसरफ हैं भाई। तो इस्तिस्ना से क्या मुराद है, इखराज है भाई। तो कहते हैं इस्तस्नल खुमुसा, अल्लाह ताला ने इस्तिस्ना फरमाया खुमुस का। ويقسم أربعة الأخماس بين الغانمين اور امام تقسیم کرے گا چار خمس ان غنیمت والوں کے درمیان. بھئی دیکھیے مال غنیمت کے کل پانچ حصے کیے, پانچ میں سے ایک خمس جو ہے وہ تو اس کے مصارف آیت کے اندر ذکر ہو گئے بھئی, اور باقی چار خمس رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ چار خمس, وہی ذکر کر رہے ہیں. وَيَقْسِمُ أَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ اور امام جو ہے وہ چار خمس ان غنیمت والوں کے درمیان تقسیم کر دے گا. لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَسَمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ, اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تقسیم فرمائے غنیمت والوں کے درمیان, یعنی ایک خمس نکال کر باقی جو چار خمس بچ گئے تھے انہیں حضور علیہ السلام نے غازیوں میں تقسیم فرمایا. ثم للفارس سهمان وللراجل سهم عند ابي حنيفة رحمه الله. بھئی یاد رکھو مال غنیمت جب تقسیم کیا جائے گا تو جو پیدل جنگ لڑ رہے تھے جو پیادے تھے ان کو ایک حصہ ملے گا, اور جو گھڑ سوار تھے ان کو دو حصے یعنی پیدل کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا. بھائی یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے بھائی, جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو گھڑ سوار ہے اس کو تین حصے ملیں گے, یعنی پیادے کے مقابلے میں تین گنا مال ملے گا سوار کو. بھائی کہتے ہیں ثم للفارس سهمان, فارس کہتے ہیں گھڑ سوار کو بھائی, یعنی شہ سوار, گھڑ سوار اور شہ سوار دونوں کا معنی ہے وہ جو گھوڑے پر سوار ہو. بھائی کہتے ہیں ثم للفارس سهمان, پھر گھڑ سوار کے دو حصے ہیں, وللراجل سهم اور جو پیدل ہے اس کا ایک حصہ ہے, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک, وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں, للفارس ثلاثۃ اسهم کہ گھڑ سوار کے لیے تین حصے ہیں, وہو قول الشافعی رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی, لما روى ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ ان النبی علیہ الصلاۃ والسلام اسهم للفارس ثلاثۃ اسهم وللراجل سهما کہ حضور علیہ السلام نے اسهم للفارس ثلاثۃ اسهم کہ حضور علیہ السلام نے شہ سوار کے لیے تین حصے نکالے, وللراجل سهما اور پیادے کے لیے ایک حصہ نکالا, ولأن الاستحقاق بالغناء جی یہاں سے عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ گھڑ سوار کے تین حصے ہونے چاہیے. یہ صاحبین کی دلیل چل رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے گھڑ سوار کو تین حصے دیے تھے. ولأن الاستحقاق بالغناء یاد رکھو بھائی, غنا غنا کا معنی ہے فائدہ, فائدہ ایک فائدہ ہے پیادے کا, تو گھڑ سوار کے اس کے مقابلے میں تین فائدے ہیں بھائی, تو لہذا گھڑ سوار کو تین حصے ملیں گے. تو غنا کا کیا معنی؟ فائدہ, فائدہ. میری یہ کتاب میں یہاں اس کا معنی لکھا ہے بین السطور کارکردگی بھائی, ہاں یہ بہترین ترجمہ ہے بھائی, اس کا فائدہ زیادہ ہے یعنی کارکردگی زیادہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں ولی ان الاستحقاق بالغناء اور اس لیے کیونکہ مستحق ہونا وہ کارکردگی کی وجہ سے ہوتا ہے, وغناؤہ علی ثلاثۃ امثال الراجل اور گھڑ سوار کی کارکردگی جو ہے وہ پیادے کے تین مثل کے برابر ہے, وہ پیادے کے تین گنا ہے, یعنی گھڑ سوار کا فائدہ اور اس کی کارکردگی پیدل والے سے تین گنا ہے. تو کہتے ہیں وغنا اوہو اور گھڑ سوار کی جو کارکردگی ہے اعلی ثلاثۃ امثال الراجل وہ پیادے کے تین مثل ہے, لانه للکر والفر والثبات والراجل للثبات لا غیر. کرن کا معنی ہے حملہ کرنا, کرن کا معنی ہے حملہ کرنا, والفر فرن کا معنی ہے بھاگنا, بھاگنا. بھائی گھڑ سوار کبھی حملہ کرتا ہے, کبھی وہ واپس مڑتا ہے بھاگتا ہے اور پھر گھوم کر آتا ہے اور دوبارہ حملہ کرتا ہے. جو پیدل لڑ رہا ہے بھائی وہ تو ظاہر ہے ایک ہی جگہ پر لڑ رہا ہوگا, लेकिन जो घोड़े पर सवार है वो तो घोड़ा उसके काबू में है, वो कभी एक तरफ हमला करेगा और कभी घोड़े को घुमाएगा दूसरी तरफ, घूम कर आ जाएगा और फिर हमला करेगा। बात समझ में आ गई? तो मालूम हुआ घुड़सवार वो कभी आगे बढ़कर हमला करता है, कभी पीछे मुड़कर लंबा चक्कर काट कर आकर फिर दोबारा हमला करता है, और कभी एक ही जगह जमकर लड़ता है। तो घुड़सवार के तीन फायदे हो गए, एक कर्रोन है हमला करना, दूसरा फर्रोन है पलटना, पलटकर पीछे से आना, और तीसरा है सबात, भाई एक जगह जमकर लड़ना। तो पयादा उसमें सिर्फ सबात है, वो एक जगह जमकर लड़ रहा है, और घुड़सवार के फायदे तीन हैं भाई। तो मेरी किताब में कर्रोन का माना लिखा है झपटना, मैंने क्या माना किया हमला करना, तो वही झपटना यानी हमला करना वही मुराद है, तो उसके लिए ये लफ्ज और ज्यादा बेहतर है। लिअन्नहु लिलकर्रि वल फर्रि, इसलिए क्योंकि जो घुड़सवार होता है लिलकर्रि वल फर्रि वस्सबाति, वो झपटने के लिए है और पलटने के लिए है, वस्सबाति और एक जगह जमकर लड़ने के लिए है, उसके तीनों फायदे हैं। वर्राजिलुलि सबाति ला गैरु, और जो पयादा होता है वो तो एक जगह जमने के लिए होता है, ला गैरु इसके अलावा के लिए नहीं, वो तो एक ही जगह जम कर लड़ सकता है। तो मालूम हुआ अकल भी यही कहती है कि घुड़सवार का हिस्सा तीन गुना होना चाहिए पयादे के मुकाबले में। वली अबी हनीफा रहमला, इमाम साहब फरमाते कि नहीं, घुड़सवार के दो हिस्से होंगे, पयादे के मुकाबले में दुगना हिस्सा मिलेगा। तो अब उनकी दलील जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं वली अबी हनीफा रहमहुल्ला, और इमाम साहब की दलील जो है मा रवा इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो हदीस है जिसको रिवायत किया है हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, कि अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अअतल फारिस सहमैन वर्राजिल सहमा, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अअतल फारिसा सहमैनी, शहसवार को दो हिस्से दिए, वर्राजिला सहमन और पयादे को एक हिस्सा दिया। यह हदीस दलील है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की। तो दो हदीसें आ गईं, एक हदीस है इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की, और उसमें है कि हुजूर अलैहि सलाम ने घुड़सवार को तीन हिस्से दिए, और एक इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस है, उसमें है कि हुजूर अलैहि सलाम ने घुड़सवार को दो हिस्से दिए, और दोनों के अंदर हुजूर अलैहि सलाम का फेल जिक्र है जी। दोनों में हुजूर अलैहि सलाम का फेल जिक्र है, कौल नहीं जिक्र। इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में भी है कि हुजूर ने तीन हिस्से दिए, इन हुजूर का फेल जिक्र है, और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में भी हुजूर का फेल जिक्र है कि आपने दो हिस्से दिए। तो कहते हैं फतआरज़ा फ़िअलाहु, तो तआरुज आ गया हुजूर अलैहि सलाम के दो फ़िअलों में, यानी उनमें टकराव आ गया, एक से पता चला आपने तीन हिस्से दिए और एक से पता चला दो हिस्से दिए। फयूर जाऊ इला कौली ही, तो रुजू किया जाएगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तरफ। वकद काल अलैहि सलातु वस्सलाम, और तहकीक हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया है लिल फारिसी सहमानी वलिर राजिली सहमुन, के घुड़सवार के दो हिस्से हैं और पयादे का एक हिस्सा है। तो हुजूर अलैहि सलाम के दो अफ़ाल में तआरुज़ आया, तो हम हुजूर अलैहि सलाम के कौल की तरफ चले गए, और कौल के अंदर तो हुजूर अलैहि सलाम ने दो हिस्से जिक्र फरमाए हैं घुड़सवार के भाई, तो हुजूर अलैहि सलाम के कौल की तरफ हम चले गए। और नीज हम इन अहादीस में तत्बीक देते हैं, तत्बीक देते हैं, बज़ाहिर अहादीस में टकराव मालूम हो रहा है। एक हदीस से पता चला हुजूर अलैहि सलाम ने घुड़सवार को तीन हिस्से दिए, और एक हदीस से पता चला हुजूर अलैहि सलाम ने घुड़सवार को दो हिस्से दिए, बज़ाहिर दोनों में तआरुज़ है। तो हम दोनों में तत्बीक देते हैं, ऐसी तौजीह करते हैं, ऐसी तकरीर करते हैं कि जिससे दोनों हदीसों का टकराव खत्म हो जाए। तो हम यूं कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की जो हदीस के अंदर तीन हिस्से हैं, उसमें दो हिस्से वो थे जो घुड़सवार का हक बनता था माले गनीमत में, और एक हिस्सा हुजूर अलैह सलाम ने जायद बतौरे इनाम के दिया जी। तो आपको आगे चलकर साहिब हिदाया भी बतलाएंगे कि इमाम को इख्तियार दिया है शरीयत ने, वो जायद हिस्सा भी दे सकता है गनीमत में से, अगर किसी की कारकर्दगी अच्छी हो तो उसको जायद हिस्सा भी दे सकता है, या उनको उभारने के लिए इनाम ऐलान कर सकता है कि जिसने फला बहादुरी दिखाई तो उसके लिए इतना इतना इनाम है भाई। तो अब देखो अहादीस में तआरुज खत्म हुआ, मालूम हुआ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में दो हिस्से जिक्र हैं और दो हिस्से ही बनते थे, और इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में तीन हिस्से जिक्र हैं, उनमें से दो हिस्से वो जो सवार का हिस्सा था और एक हिस्सा उसको जायद दिया बतौर इनाम के, और इमाम को इख्तियार होता है वो जायद इनाम भी दे सकता है। भाई तो देखो अब हदीस में तआरुज खत्म हुआ जी, बात समझ में आ गई। आगे देखिए كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, और कैसे तीन हिस्से हो सकते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस में क्या आया, तीन हिस्से देंगे। कहते हैं तीन हिस्से कैसे हो सकते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ही की एक और हदीस है, उसमें वो भी दो हिस्से जिक्र फरमाते हैं। मालूम हुआ हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की दोनों हदीसों में ही आपस में तआरुज आ रहा है। एक हदीस से पता चला हुजूर ने तीन हिस्से दिए और दूसरी हदीस से पता चला दो हिस्से दिए। कैफा, और तीन हिस्से कैसे हो सकते हैं। वकद रुविया अन इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, और तहकीक रिवायत किया गया है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से कि अन्न नबी अलैहि सलातु वस्सलाम कसम लिल फारिसी सहमैन वलिल राजिली सहमन, कि हुजूर अलैहि सलाम ने तकसीम फरमाया घुड़सवार के लिए दो हिस्से और पयादे के लिए एक हिस्सा। इजा तआरजत रिवायताहु, और जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की दोनों हदीसों में आपस में तआरुज आ गया यानी उनमें टकराव आ गया तो तुरज्जहु रिवायतु गैरिही, तो तरजीह दी जाएगी इनके अलावा की रिवायत को। इनकी अपनी रिवायतों में जब टकराव आ गया तो अब इनके अलावा औरों की रिवायत यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत को तरजीह होगी। वली अन्नल कर्र वल फर्र मिन जिन्स वाहिदिन, यहां से जवाब दे रहे हैं उनकी अकली दलील का। साहिबैन फरमाते थे कि घुड़सवार की कारकर्दगी तीन गुना है, उसके लिए झपटना भी है, पलटना भी है, और एक जगह जमकर लड़ना भी है। तो उसका जवाब दे रहे हैं कि भाई झपटना और पलटना ये तो एक ही जिन्स में से हैं, क्योंकि पलटना किस लिए है, झपटने के लिए ही। भाई बात समझ में आ गई, तो दोनों एक ही जिन्स है, एक ही चीज है, आप इन दोनों को अलग अलग कैसे शुमार कर रहे हैं। लिहाजा जब एक जिन्स है तो मालूम हुआ घुड़सवार के लिए एक कर और फर है और एक अपनी जगह पर लड़ना है, तो दुगनी कारकर्दगी है पैदल के मुकाबले में, तो दो हिस्से मिलने चाहिए। तो कहते हैं वली अन नल कर रवल फर रमीन जिन्स वाहिदीन, और नहीं इसलिए क्योंकि झपटना और पलटना ये तो एक ही जिन्स में से है। फयकूनु गना उहु मिसल गना इराजिली, फयकूनु गना उहु, तो इस घुड़सवार की जो कारकर्दगी है मिसल गना इराजिली, असल में क्या था मिसलैनी, नून इजाफत से गिर गया, दो मिसल भाई। कहते हैं फयकूनु गना उहु, तो इस घुड़सवार की जो कारकर्दगी है मिसल गना इराजिली, वो पयादे की कारकर्दगी के दो मिसल है, उसके उससे दुगनी है। फयुफज़लु अलैहि बिसहमिन, लिहाजा इसको उस पर तरजीह दी जाएगी एक हिस्से के साथ, जब कारकर्दगी उससे दुगनी है तो हिस्सा भी उससे दुगना ही मिलना चाहिए, एक हिस्सा उससे जायद मिलना चाहिए। तो कहते हैं फयुफज़लु अलैहि बिसहमिन, तो इसको तरजीह दी जाएगी उस पर एक हिस्से के साथ। वली अन्नहु तअज़्ज़रा एतबारु मिक़दारी ज़्यादती, और नीस इसलिए क्योंकि ज़्यादती की मिक़दार का एतबार करना मुमकिन नहीं है। भाई देखिए, लड़ाई के अंदर आप कह रहे हैं कि घुड़सवार की कारकर्दगी ज्यादा है पयादे के मुकाबले में, लेकिन लड़ाई के अंदर तो कारकर्दगी का पता ही नहीं चल सकता। हर आदमी जंग के अंदर मशगूल है, तो कुछ पता नहीं किसकी कारकर्दगी अच्छी है और किसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं, ये पता ही नहीं चल सकता। तो जब पता ही नहीं चल सकता कारकर्दगी का, तो फिर जाहिरी सबब को देखा जाएगा, और जाहिरी सबब तो पयादा एक है, जबकि घुड़सवार में घुड़सवार खुद भी है और उसका घोड़ा भी है, तो वो दो के बराबर हुआ भाई, एक उसका घोड़ा और एक वो खुद भाई। तो कहते हैं वली अन्नहु तअज़्ज़रा एतबारु मिकदारी ज़ियादती, और इसलिए क्योंकि ज़ियादती की मिकदार का एतबार करना मुमकिन न रहा, लितअज़्ज़ुरी मारिफतिही, इसलिए क्योंकि इसको जानना मुमकिन न रहा, क्योंकि हर एक जंग में मशगूल है, तो लितअज़्ज़ुरी मारिफतिही, इस वजह से कि इसको जानना मुमकिन नहीं है, फयुदारुल हुक्म अला सबबिन ज़ाहिरिन, तो हुक्म का मदार होगा जाहिरी सबब पर, वलिल फार इसी सबबानी, और घुड़सवार के लिए दो सबब हैं, दो सबब हैं, अन्नफ्सु वल फरसु, एक उसकी अपनी जात है और एक घोड़ा है, वलिर्राजिली सबबुन वाहिदुन, और पयादे के लिए एक ही सबब है, फकान इस्तेहकाकुहु अला ज़िअफिही, लिहाजा घुड़सवार का जो इस्तेहकाक है अला ज़िअफिही, वो पयादे से दुगना होगा, वो पयादे से दुगना होगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, वला युसमु इल्ला लिफरसिन वाहिदिन, भाई सूरत है मसला ये कि एक मुजाहिद यहां से अपने साथ दो घोड़े ले गया, या एक मुजाहिद अपने साथ तीन घोड़े ले गया, तो क्या हर घोड़े के मुताबिक अलग अलग हिस्सा उसको मिलेगा, यानी उसे सिर्फ एक ही घोड़े का हिस्सा मिलेगा या बाकी घोड़ों के हिस्से भी मिलेंगे? कहते हैं नहीं, सिर्फ एक ही घोड़े का हिस्सा मिलेगा। कहते हैं वला युसामु, और हिस्सा नहीं निकाला जाएगा, इल्ला लिफरसिन वाहिदिन, मगर एक ही घोड़े के लिए। वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह तआला युसामु लिफरसैनी, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दो घोड़ों के लिए हिस्से निकाले जाएंगे। जब यहां से वो कितने घोड़े लेकर गया है? दो। हां, दो से ज्यादा घोड़े, उसमें तो बिल इत्तेफाक को तीसरे घोड़े का हिस्सा नहीं होगा। अलबत्ता दो घोड़े अगर लेकर गया है, दो घोड़े लेकर उसने जिहाद की नीयत से सरहद अबूर की है, तो इमाम अबू यूसुफ रमल्ला फरमाते हैं कि अब ये दोनों घोड़ों का हिस्सा इसको मिलेगा। भाई तो कहते हैं वकाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ताला युसमु लिफरसैनी, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दो घोड़ों के लिए हिस्से निकाले जाएंगे, लिमा रुविया, बवजह उस हदीस के जिसको रिवायत किया गया है कि अन्ना नबी अलैहि सलातु वस्सलामु असहम लिफरसैनी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा निकाला दो घोड़ों के लिए, वली अन्नल वाहिद कद याया आयिया, याया का माना है थक जाना, अकली दलील जिक्र कर रहे हैं कि दो घोड़ों का हिस्सा होना चाहिए। कहते हैं वली अन अलवाहिद कद याया, इसलिए क्योंकि एक घोड़ा तो कभी थक जाता है, फयुहताजु इलल आखरी, तो हाजत पेश आती है दूसरे घोड़े की, वलहुमा, अब तरफेन की दलील आ गई, तरफेन फरमाते नहीं एक ही घोड़े का हिस्सा मिलेगा, वलहुमा तरफेन की दलील यह है कि अन अलबारा अबना औसिन रजी अल्लाह तआला अन्हु काद फरसैनी, कि हजरत बरा इब्ने औस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काद फरसैनी, वो दो घोड़े लेकर गए, काद यकूदु का माना है आगे से जानवर को लेकर चलना, कि ले जाने वाला आगे हो और जानवर उसके पीछे हो, यहां मुराद है ले जाना, भाई ले जाना। कहते हैं वलहुमा, और तरफेन की दलील यह है कि अनल बारा अबना औसिन रजी अल्लाह तआला अन्हु काद फरसैनी, कि बारा इब्ने औस रजी अल्लाह तआला अन्हु दो घोड़े लेकर गए, वलम युसहिम रसूलुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम इल्ला लिफरसिन वाहिदिन, मगर हिस्सा नहीं निकाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगर एक ही घोड़े का, वली अनल किताल ला यतहक्कु बिफरसैनी दफअतन वाहिदतन, तो भाई रिवायात में तआरुस आया, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह ने हदीस जिक्र की कि हुजूर ने दो घोड़ों का हिस्सा दिया था, हमने हदीस जिक्र की कि हुजूर अलैहि सलाम ने एक घोड़े का हिस्सा दिया था, तो रिवायात में अहादीस में तआरुस आ गया, तो उससे निचले दर्जे की दलील यानी हम कियास की तरफ चले जाएंगे, और कियास और अकल यही तकाजा करती है कि एक घोड़े का हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई की जाती है तो उस वक्त एक ही घोड़े पर सवार होकर लड़ाई की जाती है। वली अन अल किताल ला यतहक्कु बिफरसैनी दफअतन वाहिदतन, और इसलिए क्योंकि लड़ाई जो है वो दो घोड़ों के साथ नहीं पाई जाती, दफअतन वाहिदतन, एक ही मर्तबा में, यानी एक ही मर्तबा में दो घोड़ों पर बैठकर लड़ाई नहीं की जा सकती, फला यकून उस सबब जाहिर मुफजियन इलल किताल अलैहिमा, फला यकून उस सबब जाहिर, तो सबब जाहिरी जो है वो नहीं है मुफजियन पहुंचाने वाला, इलल किताल अलैहिमा, इन दोनों पर लड़ाई की तरफ। भाई देखिए, हमारे नजदीक हमारे नजदीक गनीमत का मुस्तहिक होने का जाहिरी सबब क्या है कि सरहद अबूर की जाए जिहाद की नीयत से। तो अगर कोई आदमी दो घोड़े लेकर भी सरहद अबूर करता है जिहाद की नीयत से, फिर भी ये इन दोनों पर बैठकर तो नहीं लड़ सकता, एक वक्त में तो वो एक ही घोड़े पर लड़ेगा। तवज्जो है, सबब जाहिरी के एतबार से देखें कि उसने दो घोड़े लेकर सरहद अबूर की है, लेकिन ये सबब जाहिरी दोनों घोड़ों पर लड़ाई तक पहुंचाने वाला नहीं, लड़ाई तो एक ही घोड़े पर होगी। ये माना है फला यकून उस सबब जाहिरु, तो वो जो सबब जाहिरी है यानी वो जो मुजावजत है, वो जो सरहद अबूर करना है, वो नहीं है मुफजियन इलल किताल अलैहिमा, वो नहीं है कि वो पहुंचा दे इलल किताल अलैहिमा के लड़ाई की जाए इन दोनों पर। फयुस हमुल वाहिदीन, लिहाजा हिस्सा निकाला जाएगा एक घोड़े के लिए। वलिहादा ला युस हमुल सलासती अफरासिन, और इसीलिए तो तीन घोड़ों का हिस्सा नहीं निकाला जाएगा, यानी ये बिल इतफाक है, बिल इजमा। अगर कोई मुजाहिद तीन घोड़े ले गया तो बिल इतफाक तीन घोड़ों का हिस्सा नहीं निकाला जाएगा, वो इसी वजह से कि जो उसने लड़ाई करनी है वो तो एक ही घोड़े पर करनी है भाई। तो जब तीन घोड़ों का हिस्सा बिल इतफाक नहीं है तो फिर दो घोड़ों का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, एक ही घोड़े का होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई तो वो एक ही घोड़े पर करेगा। ये माना है वलिहादा ला युसमुली सलासती अफरासिन, और इसीलिए बिल इतफाक तीन घोड़ों का हिस्सा नहीं निकाला जाता। वमा रवाहु महमूल अल तनफीली, और वो हदीस जिसको इमाम अबू यूसुफ रमला ने रिवायत किया, महमूल अल तनफीली, वो तनफील पर महमूल है। नफल, नफल कहते हैं जायद हिस्सा देना, नफल का क्या माना है जायद, तो इमाम अपनी तरफ से किसी को जायद हिस्सा दे सकता है, मैंने आपको बतलाया। तो कहते हैं ये हदीस जो इमाम अबू यूसुफ रमला ने रिवायत की कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो घोड़ों का हिस्सा दिया था, तो हम इसको तनफील पर महमूल करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हिस्सा जायद बतौर इनाम के दिया था भाई। तो अब रिवायात में तत्बीक आ गई, मालूम हुआ दोनों हदीसों में कोई टकराव नहीं है। बरा इब्ने औस दो घोड़े लेकर गए थे, लेकिन उनको एक घोड़े का हिस्सा दिया क्योंकि एक घोड़े का ही हिस्सा बनता था, और दूसरी जगह हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो घोड़ों के हिस्से दिए, वो बतौरे इनाम के था। तो देखो अहादीस में तआरुज खत्म हुआ भाई। तो कहते हैं वमा रवाहु महमूलुन अल तनफीली, और वो हदीस जिसको इमाम अबू यूसुफ रमला ने रिवायत किया वो तनफील पर महमूल है। कमा आता सलमत बन अल अकवाई रजी अल्लाह ताला अन्हु सहमैनी व हुआ राजिलुन, जैसे कि हुजूर अलैह सलाम ने हज़रत सलमा इबन अल अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दो हिस्से दिए, और वो पयादे थे, वो पैदल जंग कर रहे थे, लेकिन हुजूर अलैह सलाम ने उनको दो हिस्से दिए, मालूम हुआ एक हिस्सा जायद दिया बतौर इनाम के भाई। तो कहते हैं कमा आता, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया सलमत बन अल अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु सहमैनी, हज़रत सलमा इब्ने अकवा रजी अल्लाह ताला अन्हु को दो हिस्से, वह हुआ राजिलुन, इस हाल में कि वो पयादे थे। आगे देखिए वल बराजीन वल इताकु सवाउन, बराजीन जमा है बिरजौन की, और बिरजौन कहते हैं गैर अरबी घोड़ा, बिरजौन कहते हैं गैर अरबी घोड़ा, और इताक जमा है अतीक की, और अतीक कहते हैं उम्दा और आला घोड़ा, यानी अरबी नस्ल का घोड़ा। भाई याद रखो आज भी दुनिया के अंदर अरबी घोड़े इंतहाई पसंदीदा हैं और इंतहाई कीमती शुमार होते हैं। अरब घोड़ों के भी नस्ब याद रखते थे भाई कि ये फलां घोड़े का बच्चा है और ये फलां का बच्चा है, बात समझ में आ गई, और ये इंतहाई कीमती शुमार होते थे अरबों के हां भाई। तो अब एक अजमी घोड़ा है और एक अरबी घोड़ा है, क्या दोनों का हिस्सा बराबर होगा? तो साहिब हिदायत बतलाएंगे कि हां अरबी और गैर अरबी घोड़े बराबर हैं भाई। कहते हैं वल बराजीन वल इताकु सवाउन, और गैर अरबी घोड़े और अरबी घोड़े बराबर हैं। लिअन्न अल इरहाब मुजाफुन इला जिन्सिल खैल फिल किताबी, अरहब युरहिब इरहाब का माना है दूसरे को डराना, उसको खौफजदा करना, उस पर हैबत तारी करना। लिअन्न अल इरहाब, इसलिए क्योंकि इरहाब जो है मुजाफुन इला जिन्सिल खैली, उसकी निस्बत की गई है जिन्स खैल की तरफ। फिल किताब, किताबुल्लाह के अंदर भाई ये आयत आगे आ रही है। वमिन रिबातिल खैली तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि दुश्मनों के लिए जिस कदर कुव्वत तुम तैयार कर सकते हो वो कुव्वत भी तैयार करो। वमिर रिबातिल खैली, याद रखो रिबातुल खैल कहते हैं घोड़ों का अस्तबल, रिबातुल खैल घोड़ों का अस्तबल यानी यूं कहो घोड़ों की छावनियां। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं मोमिनीन को कि कुफार के लिए जिस कदर कुव्वत तुम तैयार कर सकते हो वो कुव्वत भी तैयार करो। वमिर रिबातिल खैली, और घोड़ों की छावनियां भी उनके लिए तैयार करो। तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि व अदुवकुम, कि उसके जरिए तुम हैबत तारी करो अल्लाह के दुश्मनों पर और अपने दुश्मनों पर यानी इन कुफार पर। तो अरहबा युरहिबु इरहाब का क्या माना, हैबत तारी करना, खौफजदा करना। तो कहते हैं लिअन्नल इरहाब मुजाफुन इला जिनसिल खैली फिल किताबी, इसलिए क्योंकि हैबत तारी करना उसकी निस्बत की गई है इला जिनसिल खैली जिनस खैल की तरह फिल किताबी किताबुल्लाह में। याद रखो खैलुन, खैल एक घोड़े को नहीं कहते, ये घोड़ों की जमात को कहते हैं। एक घोड़ा हो उसको फरस कहते हैं और खैल इसी की जमा है मिन गैरी लफ्जी ही। खैल इसी फरस की जमा है मिन गैरी लफ्जी ही, यानी जमा तो ये फरस की है लेकिन मादा इसका अलग है, तो ये इसको कहते हैं जमा मिन गैरी लफ्जी ही। भाई बात समझ में आ गई, तो मालूम हुआ खैल घोड़ों की जमात को कहते हैं। तो कुरान में मुतलकन घोड़ों का जिक्र है, उसमें अरबी और अजमी का कोई फर्क नहीं किया गया। यह माना है लिअन्नल इरहाब मुजाफुन इला जिनसिल खैली, इसलिए क्योंकि इरहाब जो है उसकी निस्बत की गई है घोड़ों की जिन्स की तरफ फिल किताबी किताबुल्लाह में। قال الله تعالى, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमिर रिबातिल खैली, और तैयार करो इनके लिए घोड़ों की छावनियां। तुरहिबून बिही अदुवल्लाहि, जिसके जरिए तुम हैबत तारी करो अल्लाह के दुश्मन पर। व अदुवकुम, और अपने दुश्मन पर। वस्मुल खैल युतलकु अलल बराजीन वल इताक वल हजीन वल मुकरिफ इतलाकं वाहिदा। बराजीन, भाई मैंने आपको बतला दिया बराजीन जमा है बिरजौन की और ये गैर अरबी घोड़े को कहते हैं। इताक मैंने बतलाया ये जमा है अतीक की और ये अरबी घोड़े को कहते हैं। हजीन, भाई याद रखो हजीन वो घोड़ा है कि जिसका बाप जो है वो अजमी है और मां जो है वो अरबी है। भाई बाप जो है वो गैर अरबी घोड़ा है और मां जो है वो अरबी नस्ल की घोड़ी है। भाई तो इससे जो बच्चा पैदा होगा वो हजीन कहलाता है। और मुकरिफ, भाई मुकरिफ इसके बरअक्स है, यानी वो घोड़ा कि उसका बाप तो अरबी नस्ल का घोड़ा है और मां जो है वो गैर अरबी नस्ल की है। भाई तो इन दो के मिलाप से जो बच्चा पैदा होगा उसको मुकरिफ कहेंगे। साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि खैल का लफ्ज, खैल घोड़ों की जमात, खैल का लफ्ज चाहे बराजीन हो, चाहे इताक हो, चाहे हजीन हो और चाहे मुकरिफ हो, सब पर ये एक ही तरह बोला जाता है। भाई ये माना है वस्मुल खैली, और खैल का इसम जो है युतलकु, इसका इतलाक किया जाता है यानी इसको बोला जाता है अलल बराजीन वल इताक वल हजीन वल मुकरिफ इतलाकं वाहिदा, यानी इन सब पर एक ही जैसा इतलाक किया जाता है लफ्ज खैल का। तो ये सब इसमें दाखिल है भाई। और नीज ये भी याद रखना, ये जो हिस्सा निकाला जाएगा ये सिर्फ घोड़े का हिस्सा निकाला जाएगा। अगर कोई जिहाद पर अपने साथ ऊंट ले गया है या खच्चर या गदा वगैरह ले गया है उनका अलग हिस्सा नहीं होगा। भाई ये फजीलत सिर्फ किसकी है, घोड़े की है भाई, तो लिहाजा उसका हिस्सा होगा। भाई कहते हैं वली अन अल अरबी या इन कान फी तलबी वल हरबी अक्वा फल बिरज़ौन असबर व अलयन अतफा फफी कुल वाहिद मिनहुमा मनफअतुन मुअतबरतुन फस्तबया। यहां से बतला रहे हैं कि भाई अरबी और गैर अरबी घोड़ा बराबर हैं, इसलिए क्योंकि अरबी घोड़ा उसके अंदर अगर एक सिफत पाई जाती है तो अजमी घोड़े में भी उसके मुकाबले में एक सिफत पाई जाती है। अरबी घोड़ा तलब में और दौड़ में बहुत तेज है। भाई अरबी घोड़ा तलब और दौड़ में बहुत तेज है, मसलन किसी चीज की तलब में उसको दौड़ा रहे हैं, मसलन शिकार कर रहे हैं या दुश्मन के पीछे भाग रहे हैं, तो तलब में और दौड़ में अरबी घोड़ा बे इंतहा तेज रफ्तार है, जबकि इसके मुकाबले में जो गैर अरबी घोड़ा है वो बड़ा सब्र वाला है, यानी वो ज्यादा बोझ उठा सकता है और नीज वो काबू में भी आसानी से आ जाता है। अरबी घोड़ा जितना आला है ये इतनी जल्दी हर एक के काबू में भी नहीं आता। हां, जब वो काबू में आ गया तो कोई और उसका फिर मुकाबला नहीं कर सकता, अलबत्ता काबू करना उसको अजमी घोड़े के मुकाबले में वो जरा मुश्किल है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन अल अरबी या इनका अनफी तलबी वल हरबी अकवा, और इसलिए क्योंकि अरबी घोड़ा जो है वो अगरचे तलब और दौड़ने में ज्यादा कवी है, हरब का माना है दौड़ना, वो तलब और दौड़ने में ज्यादा कवी है, फल बिरजाउन असबरू, तो गैर अरबी घोड़ा असबरू वो ज्यादा सबर वाला है, यानी वो ज्यादा मशक्कत बर्दाश्त करता है, ज्यादा बोझ उठा सकता है, वह अलियनु अतफन, और वो ज्यादा नरम है अतफन बेतबार झुकने के। आतफा या आतिफू का माना है झुकना और माइल होना, यानी झुकने में ज्यादा नरम है, यानी जल्दी काबू में आ जाता है। तो कहते हैं वह अलियनु अतफन, और वो ज्यादा नरम है बेतबार झुकने के यानी काबू में आने के। फफी कुल्लि वाहिद मिन्हुमा मनफातुम मुअतबरतुन, तो इन दोनों में से हर एक के अंदर ऐसा फायदा है जो मुअतबर है। फस्तवया, तो दोनों बराबर हो गए। एक घोड़े में अगर एक फायदा है तो दूसरे में दूसरा फायदा है, तो दोनों बराबर हो गए, तो दोनों का हिस्सा बराबर होगा। भाई आगे देखिए, वमन दखल दार अल हर्बी फारिसन फनफक फरसुहु इस्तहक सहमल फुरसानी, वमन दखल राजिलन फश्तरा फरसन इस्तहक सहम राजिलिन। भाई सूरत मसला यह कि एक मुजाहिद यहां से घोड़ा अपने साथ लेकर गया और फिर रास्ते में ही इसका घोड़ा मर गया और इसको पैदल जंग करना पड़ी। कहते हैं इसको फिर भी दो हिस्से मिलेंगे क्योंकि एतबार सरहद को अबूर करने का है और मुजावजत के वक्त तो इसके पास घोड़ा मौजूद था, लिहाजा इसको घोड़े का भी हिस्सा मिलेगा। जबकि इसके बरअक्स एक आदमी यहां से उसने सरहद पैदल अबूर की है और वहां जाकर इसने घोड़ा खरीदा और उस पर लड़ाई की है, तो कहते हैं इस सूरत में इसको पैदल आदमी का हिस्सा मिलेगा, इसलिए क्योंकि एतबार मुजावजत का है, यानी सरहद से तजावुज करने का एतबार है। भाई कहते हैं वह मन दखला दार अल हर्ब फारिसन, और जो शख्स दारुल हर्ब में घुड़सवार होकर दाखिल हुआ, फनफका फरसुहु, तो उसका घोड़ा हलाक हो गया, इस्तहक सहमल फुरसानी, तो ये घुड़सवारों के हिस्से का मुस्तहिक होगा। फुरसान जमा है फारिस की और फारिस का माना है घुड़सवार, तो कहते हैं इस्तहक सहमल फुरसानी, तो ये घुड़सवारों के हिस्से का मुस्तहिक होगा। वमन दखल राजिलन, और जो पयादा पा दाखिल हुआ, फश्तरा फरसन, तो उसने घोड़ा खरीद लिया, इस्तहक सहम राजिलिन, तो ये पयादे के हिस्से का मुस्तहिक होगा। व जवाब शाफिई रहमहुल्लाह तआला अला अक्सिही फिल फसलैनी, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह का जवाब इसके बरअक्स है, फिल फसलैनी, दोनों फसलों में। भाई इमाम शाफी रहमहुल्लाह के नजदीक सरहद अबूर करने का एतबार ही नहीं है बल्कि लड़ाई में हाजिर होने का एतबार है, लिहाजा अगर कोई शख्स घोड़े को लेकर सरहद अबूर करता है लेकिन उसका घोड़ा जंग से पहले ही मर गया, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक लड़ाई में जब यह हाजिर हुआ तो पैदल था, लिहाजा इसको पैदल का हिस्सा मिलेगा। और अगर कोई शख्स सरहद तो पैदल अबूर करके गया लेकिन वहां उसने घोड़ा खरीद लिया और उस पर लड़ाई की, तो उनके नजदीक उसको घुड़सवार का हिस्सा मिलेगा। यह माना है वह जवाब शाफिई रहमहुल्लाह तआला अला अक्सिही फिल फसलैनी, और इमाम शाफिई रहमहुल्लाह का जवाब इसके बरअक्स है, दोनों फसलों में। वहां कदा रवबनुल मुबारक रहमहुल्लाह तआला अन अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और इसी तरह रिवायत किया है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से, फिल फसल सानी, दूसरी फसल में जी। इसी तरह रिवायत किया है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह ने इमाम साहेब से, दूसरी फसल में। दूसरी फसल यानी जब वहां जाकर मुजाहिद ने घोड़ा खरीदा और उस पर लड़ाई की, तो इमाम साहब से एक रिवायत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ये नकल करते हैं कि इसने घोड़े पर सवार होकर लड़ाई की है, लिहाजा इसको घुड़सवार का हिस्सा मिलेगा। यह माना है वहां कदा रवबनुल मुबारक अन अबी हनीफा रहिमहुमल्लाहु तआला फिल फसल सानी, और इसी तरह रिवायत किया है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इमाम आजम अबू हनीफा रहिमहुमल्लाहु तआला से, फिल फसल सानी, दूसरी फसल में। कि अन्नहु यस्तहिक सहमल फुरसानी, कि यह शख्स जो है घुड़सवारों के हिस्से का मुस्तहिक होगा, जिसने वहां जाकर घोड़ा खरीदा और उस पर लड़ाई की तो वो घुड़सवारों के हिस्से का मुस्तहिक होगा। वल हासिलु, और हासिल कलाम यह है कि अन्नल मुअतबरा इंदना हालतुल मुजावजती, कि हमारे नजदीक जो है मुजावजत की हालत मुअतबर है, यानी इसने सरहद किस तरह अबूर की थी उसका एतबार किया जाएगा। वइंदहु हाल उनकेजा इल हरबी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जंग के गुजरने की हालत मुअतबर है। इनकेजा उल हर्ब, जंग का गुजर जाना, जंग का गुजर जाना, तो हमारे नजदीक मुजावजत की हालत मुअतबर है, यानी सरहद अबूर करते हुए वो पैदल था या सवार था यह देखा जाएगा। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक लड़ाई के गुजरने का एतबार है। इस पर इश्काल होता है कि ये तो आपने एक नई वजह जिक्र कर दी, इससे पहले आपने हमें बताया था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक लड़ाई में हाजिर होने का एतबार है, और अब आप कह रहे हैं लड़ाई के गुजरने का एतबार है, तवज्जो है, तो उसका भी जवाब देते हैं उलमा कि यहां दरअसल इमाम शाफी रहमतुल्लाह से दो रिवायतें हैं। एक रिवायत के मुताबिक लड़ाई के गुजरने का एतबार है, और एक रिवायत के मुताबिक लड़ाई में हाजिर होने का एतबार है। तो यहां साहिब हिदाया ने एतबार के अंदर जंग के गुजरने को जिक्र कर दिया, और आगे आप दलील जिक्र करेंगे तो उसमें लड़ाई के अंदर हाजिर होने को जिक्र करेंगे। यानी साहिब हिदाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दोनों रिवायतों की तरफ इशारा फरमा रहे हैं भाई। तो कहते हैं वइंदहु हाल उनकिजा इल हरबी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जंग के गुजरने की हालत मुअतबर है। लहू, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील यह है कि अन्न सबब हुवल कहरु वल कितालु, कि गनीमत के मुस्तहिक होने का सबब जो है हुवल कहरु वल कितालु, वो गलबा और लड़ाई है। फयुअतबरु हालु शख्स इंदहु, लिहाजा किसी शख्स की वो हालत मुअतबर होगी इंदहु जो लड़ाई में हाजिर होते वक्त है। फयुअतबरु हालु शख्स इंदहु, लिहाजा किसी शख्स की वो हालत मुअतबर होगी जो उस लड़ाई के वक्त हो। वल मुजावजतु वसीलतुन इलस सबबी, और ये सरहद उबूर करना ये तो वसीला है सबब तक पहुंचने का। सबब क्या है? लड़ाई में हाजिर होना, और सरहद उबूर करना वो वसीला है, वो इस सबब तक पहुंचने का जरिया है। और जरिए का एतबार नहीं होता, सबब का एतबार होता है। जैसे मुजाहिद का घर से निकलना, मुजाहिद घर से निकलेगा तो लड़ाई में पहुंचेगा, तो जैसे घर से निकलना ये लड़ाई तक पहुंचने का जरिया और वसीला है, और घर से निकलना ये तो बिल इत्तेफाक किसी के नजदीक भी मुअतबर नहीं, किसी के नजदीक भी ये नहीं देखा जाएगा कि घर से निकलते वक्त ये पैदल था या सवार था, क्योंकि ये वसीला है। वसीले का एतबार नहीं होता, बल्कि किसका एतबार होता है? सबब का। तो सरहद अबूर करना भी वसीला और जरिया है सबब तक पहुंचने का, तो सबब का एतबार होगा, वसीले का एतबार नहीं होगा। यह माना है वल मुजावजत वसीलतुन इलस सबबी, और सरहद से तजावुज करना वो वसीला है सबब तक पहुंचने का। कल खुरूज मिनल बैती, जैसे कि घर से निकलना। वह तालीकुल अहकाम बिल किताल यदुल्लु अला इम्कानिल वुकूफ अलैह, यहां से जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमारी दलील का। हमारी दलील आगे जिक्र होगी। याद रखो हमारे नजदीक लड़ाई में हाजिर होने का कोई एतबार नहीं जी। लड़ाई में हाजिर होने का कोई एतबार नहीं। वजह यह है कि उस वक्त तो लड़ाई का मौका है, सफें बनाई जा रही हैं, दुश्मन का मुकाबला किया जा रहा है, लिहाजा उस वक्त तो इमाम को पता चल ही नहीं सकता कि कौन सवार है और कौन पैदल है और कौन किस तरीके से लड़ रहा है और किसकी कारकर्दगी क्या है भाई। तो लड़ाई के वक्त तो सफें बनाई जा रही हैं, दुश्मन का मुकाबला किया जा रहा है, लिहाजा वहां इमाम या उसका नाइब इन चीजों पर मुत्तले नहीं हो सकते। जब इन पर मुत्तले नहीं हो सकते तो सबब को देखा जाएगा कि इन्होंने सरहद किस तरह उबूर की थी। जैसे सफर के अंदर कसर नमाज का हुक्म दिया गया मशक्कत की वजह से, लेकिन मशक्कत पर हम मुत्तले नहीं हो सकते तो उस हुक्म का मदार सफर पर ही कर दिया गया। तो यहां पर भी जब लड़ाई के अंदर पता नहीं चल सकता तो सरहद उबूर करने को ही देखा जाएगा भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो हमें जवाब देते हैं कि ए अहनाफ, आपने कहा कि लड़ाई के वक्त इन चीजों का पता नहीं चल सकता, तो कहते हैं नहीं, लड़ाई के वक्त भी इन चीजों का पता चल सकता है। चुनांचे इसीलिए जिहाद के बाज अहकाम का ताल्लुक लड़ाई से है। आगे साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि अगर नाबालिग जो थे, यानी ऐसे बच्चे जो बालिग होने के करीब हैं लेकिन अभी बालिग नहीं हुए, अगर उनको इमाम ने लड़ाई की इजाजत दी, या इसी तरह गुलाम लड़ाई के लिए आ गए और इन्होंने बाकायदा लड़ाई में हिस्सा लिया, तो फिर इनको भी कुछ माल दिया जाएगा। इनको पूरा हिस्सा तो नहीं देंगे लेकिन थोड़ा सा माल इनको भी दिया जाएगा, यानी हिस्से से कम भाई, हिस्से से कम। और कब दिया जाएगा? जब ये लड़ाई में हिस्सा लें। मालूम हुआ लड़ाई के अंदर भी चीजों का पता चल सकता है भाई। अगर गुलाम आया तो है लश्कर के साथ लेकिन लड़ाई नहीं की, या बच्चा आया तो है लेकिन लड़ाई नहीं की, तो फिर उनका हिस्सा नहीं होगा भाई। और इसी तरह लड़ाई के अंदर जो मारा जाए, लड़ाई के अंदर जो शहीद हो जाए, उनको गुस्ल नहीं दिया जाता। तो जिहाद के बाज़ अहकाम का ताल्लुक किससे है? ऐन लड़ाई से है। मालूम हुआ लड़ाई के अंदर भी इन चीजों का पता चल सकता है। जब पता चल सकता है तो आपका यह कहना जी कि लड़ाई के अंदर तो इन चीजों का पता नहीं चलेगा, आप सरहद उबूर करने को ही सबब करार देते हैं, आपका यह दावा सही नहीं है। तो कहते हैं वह तालीकुल अहकाम बिल किताली, और अहकाम को मुअल्लक करना लड़ाई के साथ, यदुल्लु अला इम्कानिल वुकूफी अलैही, वो इन पर मुत्तले होने के इम्कान पर दलालत करता है कि इन चीजों पर मुत्तले होना मुमकिन है। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वतालीकुल अहकाम बिल किताली, और अहकाम को मुअल्लक करना लड़ाई के साथ, यदुल्लु अला इम्कानिल वुकूफी अलैही, ये इस बात पर दलालत करता है कि इन पर मुत्तले होना मुमकिन है। वलौ ताअज़्ज़रा, यहां से दूसरा जवाब दे रहे हैं। पहला जवाब तो इनकारी दिया कि आपने कहा लड़ाई में इन चीजों पर मुत्तले नहीं हो सकते। हम कहते हैं नहीं, हमें आपकी बात तस्लीम नहीं, इन लड़ाई में भी इन चीजों पर मुत्तले हो सकते हैं, इसीलिए तो शरीयत ने बाज़ अहकाम का ताल्लुक ही लड़ाई से रखा है। और दूसरा जवाब दे रहे हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमें कि अगर आपकी बात मान ली जाए कि लड़ाई के अंदर इन चीजों पर हम मुत्तले नहीं हो सकते, तो फिर भी एक है सरहद उबूर करना, एक है लड़ाई के मौके पर हाजिर होना, और फिर उसके बाद एक है लड़ाई के अंदर शिरकत करना। भाई देखो, कदीम जमाने में जंग यूं होती थी कि दोनों फौजें आकर आमने सामने पड़ाव डाल लेती थीं, और फिर हर रोज जो है सुबह के वक्त दुश्मन की तरफ से भी सफें बनती और मुसलमानों की तरफ से भी सफें बनती थीं, और फिर उसके बाद उनमें लड़ाई होती थी भाई, और बाकी लश्कर वाले पीछे होते थे। सारा लश्कर इकट्ठा लड़ने के लिए नहीं आता था, बल्कि कुछ सफें आगे लड़ने के लिए आ गई, वो सारा दिन लड़ाई करती रहीं और शाम होते ही लड़ाई खत्म हो जाती, और फिर लोग जख्मियों को संभालते थे, और अगले दिन फिर इसी तरह सुबह सफें बनाई जाती और लड़ाई शुरू हो जाती थी। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा अब यहां एक सूरत यह है कि लश्कर जो है वो सरहद अबूर करके आया, और एक यह है कि दुश्मन के सामने आकर लश्कर ने पड़ाव डाल लिया, ये इसको कहेंगे ये लड़ाई में हाजिर हैं। कहां आ गए? अब दुश्मन की फौजें सामने हैं भाई, तो ये है शुहूद वका, लड़ाई में हाजिर होना, और फिर उसके बाद आगे सफें बनाई जाएंगी और बाकायदा लड़ाई होगी। तवज्जो है? तो यहां तीन चीजें हो गई, एक है सरहद अबूर करना, एक है उस लश्कर के अंदर मौजूद होना जो लड़ाई कर रहा है, और तीसरा है आगे जाकर बाकायदा लड़ाई करना भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं ए अहनाफ, आपने कहा लड़ाई में इन चीजों का पता नहीं चल सकता कि कौन सवार है और कौन पैदल है, तो आपने किसको सबब करार दिया? सरहद अबूर करने को, जबकि इसके बजाय लड़ाई के अंदर हाजिर होना, यानी लश्कर के अंदर हाजिर होना लड़ाई के वक्त, इसको सबब करार देना चाहिए क्योंकि यह लड़ाई के करीब है। जब लश्करों ने आकर आमने सामने पड़ाव डाल दिया, अब आगे चलकर क्या होगी? लड़ाई होगी। तो लश्कर के अंदर हाजिर होना लड़ाई के मौके पर, यह लड़ाई के करीब है बनिस्बत सरहद अबूर करने के, कि वो तो बात बहुत पीछे गुजर चुकी है। तो लिहाजा वो फरमाते हैं किसका एतबार करना चाहिए? लड़ाई के वक्त इस लश्कर में हाजिर होने का एतबार करना चाहिए, सरहद अबूर करने का एतबार नहीं करना चाहिए। तवज्जो है? इमाम शाफिरौला की दलील फिर सुन लें भाई। वो फरमाते हैं कि सरहद अबूर करना यह वसीला है सबब तक पहुंचने का, यानी लड़ाई तक पहुंचने का, और वसीले का एतबार नहीं किया जाता, सबब का एतबार किया जाता है। लिहाजा यहां लड़ाई का एतबार करना चाहिए कि लड़ाई के अंदर वो किस तरह हाजिर था, घोड़े पर सवार था या पैदल था भाई। और फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह हमारी दलील का जवाब देते हैं, हमारी दलील आगे जिक्र होगी कि लड़ाई के अंदर या लड़ाई के मौके पर जो हाजिर होते हैं उस वक्त उनकी हालत पर मुत्तले होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस वक्त सब लड़ाई की तैयारी में मसरूफ होते हैं। लिहाजा इस सरहद अबूर करने का ही एतबार करना पड़ेगा। तो पहला जवाब इमाम शाफी रहमतुल्लाह इनकारी देते हैं कि जिहाद के बाज अहकाम का ताल्लुक ऐन लड़ाई से होता है। जैसे बच्चा या गुलाम लड़ाई में हिस्सा लें तो उनको थोड़ा सा माल दिया जाता है, या इसी तरह लड़ाई के अंदर जो शहीद हो जाए तो उसको गुस्ल नहीं दिया जाता। मालूम हुआ कुछ अहकाम का ताल्लुक ऐन लड़ाई से है, मालूम हुआ लड़ाई के वक्त भी इन चीजों पर मुत्तले होना मुमकिन है। और दूसरा जवाब तस्लीमी दिया, अगर आपकी बात हम तस्लीम कर लें कि लड़ाई के वक्त इन चीजों पर मुत्तले होना मुमकिन नहीं, तो फिर भी एक है सरहद का अबूर करना और एक है लड़ाई के वक्त उस लश्कर में हाजिर होना। तो ये जो लश्कर में हाजिर होना है ये लड़ाई के ज्यादा करीब है, लिहाजा इसको सबब करार देना चाहिए। सरहद को अबूर करना वो तो बात बहुत पहले गुजर चुकी है, उसको सबब करार नहीं देना चाहिए। बात समझ में आ गई। फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं वतालीकुल अहकाम बिल किताली, और लड़ाई के साथ अहकाम को मुअल्लक करना यदुल्लु अला इम्कानिल वुकूफ अलैही, वो इस बात पर दलालत करता है कि इस पर मुत्तले होना मुमकिन है कि ये पैदल लड़ा है या घुड़सवार होकर लड़ा है। वलौ तअज़्ज़रा औ तअस्सरा, और अगर आपकी बात मान ली जाए कि लड़ाई के वक्त इन चीजों पर मुत्तले होना मुमकिन नहीं है, औ तअस्सरा या मुश्किल है, तो युअल्लकु बिशुहूदिल वक़अति, तो फिर भी अहकाम का ताल्लुक जो है लड़ाई के अंदर हाजिर होने के साथ होना चाहिए। लिअन्नहु अक़रबु इलल क़िताली, क्योंकि यह लड़ाई के ज्यादा करीब है, और मुजावजत वो तो दूर है भाई, वो तो बहुत पहले हो चुकी है। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम ये कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह के नजदीक एक है लड़ाई और एक है लड़ाई से पहले वो जो दोनों लश्कर एक दूसरे के सामने आ गए, यानी शुहूद वका, लड़ाई में हाजिर होना, यानी लड़ाई के वक्त लश्कर में हाजिर होना, तवज्जो है। तो एक है लड़ाई और एक है लड़ाई के वक्त लश्कर में हाजिर होना, और एक है सरहद को अबूर करना। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि असल में तो गनीमत का मुस्तहिक होने का सबब लड़ाई को करार देना चाहिए। किसको? लड़ाई को करार देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई के अंदर भी इमाम दूसरों की हालत पर मुत्तले हो सकता है। इसीलिए तो जिहाद के बाज अहकाम जो है वो लड़ाई की हालत से ही मुतालिक हैं। और अगर हम आपकी बात मान भी लें कि लड़ाई के अंदर इमाम या उसका नायब सबकी हालत पर मुत्तले नहीं हो सकते, तो फिर भी लड़ाई से पहले जो शुहूद वका है, यानी लश्कर के अंदर हाजिर होना, इसको सबब करार देना चाहिए, न कि सरहद को अबूर करने को, क्योंकि सरहद को अबूर करना वो बात तो दूर गुजर चुकी है भाई, उसको तो वक्त गुजर गया है, जबकि लश्कर के अंदर हाजिर होना ये तो लड़ाई के करीब है। तो करीब वाली चीज को सबब करार देना चाहिए गनीमत का, ना कि दूर वाली चीज को। बात समझ में आ गई। वलाना, अब हमारी दलील आ गई। वलाना, हमारी दलील ये है, अन्नल मुजावजता नफसाहा किताल्न, नफसाहा इसको मंसूब पढ़ना है भाई, क्योंकि ये ताकीद है मुजावजत की, और मुजावजत अन्ना का इसम है, मंसूब है, और ताकीद का वही एराब होता है जो मुअक्कद का एराब होता है। तो कहते हैं वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नल मुजावजत नफसहा किताल्न, के मुजावजत खुद ही लड़ाई है। हम क्या कहते हैं कि मुजावजत ये सरहद को अबूर करना ही लड़ाई है भाई। क्यों? ये किस तरह लड़ाई है? कहते हैं लि अन्नहु यलहकहुमुल खौफ बिहा, क्योंकि इसकी वजह से दुश्मन को खौफ लाहिक होगा। या मुसलमान सरहद अबूर करेंगे, तो इसी की खबरें दुश्मन को पहुंचेंगी और उस पर हैबत तारी हो जाएगी। तो कहते हैं लिअन्नहु यलहकुहुमुल खौफु बिहा, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से दुश्मन को खौफ होगा। वल हालु बादहा हालतु दवामी, और उस सरहद अबूर करने के बाद की जो हालत है हालतु दवामी, वो तो दवाम की हालत है। एक है इब्तिदाए किताल और एक है दवामी किताल। इब्तिदाए किताल का एतबार है, दवामी किताल का एतबार नहीं।
जी
तवज्जो है। बिल इत्तेफाक हमारे नजदीक भी और शवाफिया के नजदीक भी लड़ाई की आगाज का एतबार है, दवामी किताल का एतबार नहीं। एक आदमी घोड़ा लेकर मैदान जंग में आ गया, लड़ाई शुरू कर दी, तो इसको घुड़सवार का हिस्सा मिलेगा। अगरचे लड़ाई का दवाम घोड़े पर ना हुआ, इस आदमी का घोड़ा मारा गया, इस आदमी का घोड़ा मारा गया, या किसी जगह पर घोड़े से उतर कर लड़ना पड़ा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है, इतनी वो जगह ही इतनी तंग है कि घोड़े पर रहकर लड़ाई की ही नहीं जा सकती। तो इस सूरत में भी देखो दवामे किताल के अंदर घोड़ा मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी हमारे नजदीक भी इस आदमी को घुड़सवार का हिस्सा मिलेगा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी इसको घुड़सवार का हिस्सा मिलेगा। मालूम हुआ एतबार किसका है? इब्तिदाए किताल का है, दवामे किताल का एतबार नहीं है। दलील समझ में आ गई। तो कहते हैं वल हालु बादहा हालतु दवामी, और सरहद अबूर करने के बाद जो है वो तो दवामी किताल की हालत है। वला मुअतबरा बिहा, और हालत दवाम तो बिल इत्तेफाक मुअतबर नहीं है। लिअन्नल वुकूफ़ अला हकीकतिल किताल मुतअस्सिरुन, इसलिए क्योंकि हकीकतन किताल पर मुत्तले होना मुश्किल है। कि इस शख्स ने हकीकतन लड़ाई किस तरह की है उस पर मुत्तले होना मुश्किल है। तो कहते हैं लिअन्नल वुकूफ़ अला हकीकतिल किताल मुतअस्सिरुन, इसलिए क्योंकि हकीकी लड़ाई पर मुत्तले होना तो मुश्किल है, यानी इमाम और उसके नाइब के लिए। वकज़ा अला शुहूदिल वक़ाती, और इसी तरह लड़ाई में हाजिरी पर, यानी उस पर मुत्तले होना भी मुश्किल है। मैंने बतलाया था शुहूद का माना हाजिर होना और वक़ातुन का माना है लड़ाई, और इसी तरह लड़ाई के अंदर हाजिर होना, इस पर भी मुत्तले होना मुश्किल है, क्योंकि सब लड़ाई की तैयारियों में मसरूफ हैं भाई, दुश्मन की फौज सामने आ चुकी है भाई। लिअन्नहु हालुल तिका इस सफ़ैनी, इसलिए क्योंकि ये दो सफों के मिलने की हालत है, एक सफ दुश्मन की है और एक हमारी है, तो इन दो सफों के मिलने की हालत है, तैयारियां हो रही हैं भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु हालुल तिका इस सफ़ैनी, इसलिए क्योंकि ये दो सफों के मिलने की हालत है। फतुकामुल मुजावजत मकामहु, तो लिहाजा मुजावजत को ही इसके कायम मकाम किया जाएगा, मुजावजत को ही इस लड़ाई के कायम मकाम कर दिया जाएगा, क्योंकि लड़ाई के अंदर हाजिर होना उस पर भी मुत्तले होना मुश्किल है और लड़ाई पर मुत्तले होना भी मुश्किल है, तो मुजावजत को ही इस सबब के कायम मकाम कर दिया जाएगा। तो कहते हैं फतुकामुल मुजावजत मकामहु, लिहाजा मुजावजत को ही इस लड़ाई के कायम मकाम कर दिया जाएगा। इस हुआ सबबुल मुफजी इलैही जाहिरन, इसलिए क्योंकि मुजावजत ही वो सबब है जो जाहिर के एतबार से इस तक पहुंचाने वाला है। इजा कान अला कस्दिल किताली, जब वो मुजावजत लड़ाई के इरादे से हो, मुजावजत ही इस लड़ाई तक पहुंचाने वाली है, सरहद अबूर करेंगे तो फिर ही लड़ाई तक पहुंचेंगे, तो मुजावजत सबब है। तो यह माना है इस हुआ सबबुल मुफजी इलैही जाहिरन, इसलिए क्योंकि जाहिरन यही सबब है लड़ाई तक पहुंचाने वाला। इजा कान अला कस्दिल किताली, जब यह मुजावजत लड़ाई के इरादे से हो, अगर कोई तिजारत के इरादे से मुजावजत करता है उसका हिस्सा नहीं होगा भाई। तो कहते हैं इजा कान अला कस्दिल किताली, जब लड़ाई के इरादे से मुजावजत हो, फयुअतबरु हालु शख्स हालतल मुजावजति फारिसन कान औ राजिला, फयुअतबरु हालु शख्स हालतल मुजावजति, तो मुजावजत की हालत में उस शख्स की हालत का एतबार किया जाएगा। फारिसन कान औ राजिला, घुड़सवार हो या वो पैदल हो। वलौ दखला फारिसन वकातला राजिलन, और अगर एक शख्स जो है दाखिल तो हुआ घुड़सवार होकर, यानी दारुल हर्ब में, وَقَاتَلَ رَاجِلًا, لیکن اس نے لڑائی کی پیدل ہو کر, لِزِيقِ الْمَكَانِ, جگہ کے تنگ ہونے کی وجہ سے کہ وہاں گھوڑوں پر لڑائی ہی نہیں کی جا سکتی تھی, تو يَسْتَحِقُ سَحْمَ الْفُرْسَانِ بِالِاتِّفَاقِ, تو یہ شخص بالاتفاق گھڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا, بالاتفاق یعنی ہمارے نزدیک بھی اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک بھی, وَلَوْ دَخَلَ فَارِسًا, اور اگر ایک شخص گھڑ سوار ہو کر داخل ہوا, ثُمَّ بَاعَ فَرَسَهُ, پھر اس نے اپنا گھوڑا بیچ دیا, اَوْ وَهَبَ, یا گھوڑا اس نے کسی کو ہبہ کر دیا, او آ جا رہا, یا اس نے وہ گھوڑا کرائے پر دے دیا, او رہنا, یا اس نے وہ گھوڑا کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوا دیا, قرض کے بدلے میں بطور رہن کے رکھوا دیا. ففی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہم اللہ, تو حسن ابن زیاد رحم اللہ کی جو روایت ہے امام صاحب سے, اس کے مطابق یستحق سہم الفرسانی, یہ گھڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا, اعتبارا للمجاوزتی, مجاوزت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ مجاوزت کے وقت تو یہ گھڑ سوار, بھئی دیکھیے ایک شخص جو ہے گھوڑے کے ساتھ اس نے سرحد عبور کر لی, لیکن آگے جا کر وہ گھوڑے کو بیچ دیتا ہے, کسی کو تحفہ وغیرہ دے دیتا ہے اور لڑائی پیدل کرتا ہے, تو کیا اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا یا نہیں؟ تو اس میں یاد رکھو تین صورتیں بنتی ہیں, یا تو وہ لڑائی سے پہلے ہی گھوڑا بیچ دیتا ہے یا اس کو رہن وغیرہ پر رکھوا دیتا ہے, دوسری صورت ہے لڑائی کے بیچ میں وہ گھوڑا بیچتا ہے, تیسری صورت ہے لڑائی کے بعد وہ گھوڑا بیچتا ہے. تو اگر لڑائی کے بعد وہ گھوڑا بیچتا ہے پھر تو بالاتفاق اس کو گھڑ سواروں کا حصہ ملے گا, کیونکہ اس نے لڑائی کے گزر جانے کے بعد گھوڑے کو بیچا ہے. لیکن اگر لڑائی کے بیچ میں گھوڑا بیچا یا لڑائی سے پہلے گھوڑا بیچا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو اس کو گھڑ سواروں والا حصہ نہیں ملے گا. معلوم ہوا یہ جو گھوڑے کو یہاں لایا تھا اس کا مقصد اس گھوڑے پر جہاد نہیں تھا, کیونکہ جہاد سے پہلے اس نے بیچ دیا ہے, جہاد سے لڑائی سے پہلے ہی اس نے اس کو بیچ دیا ہے. البتہ حسن ابن زیاد رحم اللہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں امام صاحب سے کہ ظاہری سبب کو دیکھا جائے گا, اور ظاہری سبب تو یہ تھا کہ اس نے جب سرحد عبور کی تھی اس وقت یہ گھڑ سوار تھا, تو لہذا اس کو گھڑ سواروں والا حصہ ملے گا. تو کہتے ہیں ففی روایت الحسن عن ابی حنیفہ رحمہم اللہ, تو حسن ابن زیاد رحمہ اللہ کی جو روایت ہے امام صاحب سے, یستحق سہم الفرسانی, یہ گھڑ سواروں کے حصے کا مستحق ہوگا, اعتبارا للمجاوزتی, مجاوزت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس وقت تو یہ گھڑ سوار تھا, وفی ظاہر روایت یستحق سہم الرجالتی, اور ظاہر روایت میں یہ پیادوں کے حصے کا مستحق ہوگا. رجالہ بھائی, رجالہ جمع ہے راجل کی, جمع ہے راجل کی, جیسے فرسان جمع ہے فارس کی. تو کہتے ہیں وفی ظاہر روایتی یستحق سہم الرجالتی, تو ظاہر روایت کے مطابق یہ جو ہے پیادوں کے حصے کا مستحق ہوگا, لأن الاقدام علی هذه التصرفات, اس لیے کیونکہ اس کی پیش قدمی کرنا ان تصرفات پر, یہ جو اس نے گھوڑا بیچ دیا یا ہبا کر دیا یا کرائے وغیرہ پر دے دیا, تو اس کا پیش قدمی کرنا ان تصرفات پر, یدلو, یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے, علا انہ لم یکن من قصدہ بالمجاوزت القتال فارسا, یدلو, یہ دلالت کرتا ہے, علا انہ لم یکن من قصدہ, کہ اس کا ارادہ نہیں تھا, بالمجاوزتی, سرحد کو عبور کرنے کے ذریعے, القتال فارسا, گھڑ سوار ہو کر لڑائی کا, اس کا ارادہ نہیں تھا کہ وہ گھڑ سوار ہو کر لڑائی کرے گا, کیونکہ جب اس نے گھوڑا بیچ دیا یا تحفے میں دے دیا یا کرائے پر دے دیا یا رہن وغیرہ رکھوا دیا, معلوم ہوا سرحد عبور کرتے وقت ہی اس کا ارادہ نہیں تھا گھڑ سوار ہو کر لڑنے کا. مانا سمجھ میں آ گیا, پھر ترجمہ دیکھ لیجئے, کہتے ہیں لأن الاقدام على هذه التصرفات, اس لیے کیونکہ ان تصرفات پر پیش قدمی کرنا, يدل, یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے, على انه لم يكن من قصده بالمجاوزتی, کہ مجاوزت کے ذریعے اس کا ارادہ نہیں تھا, القتال فارسا, گھڑ سوار ہو کر لڑنے کا, ولو باعه بعد الفراغ, اور اگر اس نے گھوڑا بیچا ہے لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد, لم يسقط سهم الفرسان, تو اب گھڑ سواروں کا حصہ ساقط نہیں ہوگا, वकदा इदाबा अफी हालत इल्किताली, और इसी तरह अगर इसने घोड़ा बेच दिया लड़ाई की हालत में यानी लड़ाई के दरमियान में, इंद अल बाजी बाज़ फुकहा के नजदीक, यानी बाज़ फुकहा फरमाते हैं लड़ाई के बीच में भी अगर यह घोड़ा बेच दे तो भी इसको घुड़सवारों वाला हिस्सा मिलेगा। कहते हैं वल असहु अन्नहु यस्कुतु, और ज्यादा सही कौल यह है कि घुड़सवारों का हिस्सा साकित हो जाएगा, लड़ाई के बीच में भी अगर यह घोड़ा बेचता है तो घुड़सवारों का हिस्सा साकित हो जाएगा। तो कहते हैं वल असहु अन्नहु यस्कुतु, और ज्यादा सही कौल यह है कि लड़ाई के बीच अगर इसने घोड़ा बेचा तो घुड़सवारों का हिस्सा साकित हो जाएगा। لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه, इसलिए क्योंकि घोड़े का बेचना वो दलालत करता है कि أن غرضه التجارة فيه, कि उसकी गरज इसके अंदर तिजारत थी, लड़ाई के दौरान इसने बेचा है, मालूम है इस घोड़े के अंदर उसकी गरज तिजारत थी, जिहाद में हिस्सा लेना नहीं था। कहते हैं भाई लड़ाई के बीच में इसने बेचा है, तो कहते हैं भाई ये लड़ाई के दरमियान में इसने इसलिए बेचा कि अब लड़ाई शुरू हो गई है, और लड़ाई जब शुरू हुई घोड़ों की कीमत और ज्यादा बढ़ गई, उनकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई, तो अब घोड़े ज्यादा कीमत पर बिकेगा, मालूम हुआ ये लड़ाई के दौरान इसने इसलिए बेचा है ताकि घोड़ों की कीमत बढ़ जाए। भाई मालूम हुआ इसका मकसद उस घोड़े पर जिहाद नहीं था। कहते हैं لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه, इसलिए क्योंकि इसका बेचना दलालत करता है कि इसका मकसद इसके अंदर तिजारत थी। إلا أنه ينتظر عزته, मगर यह कि यह इसके मुअज्जज होने का इंतजार कर रहा था, इस घोड़े के मुअज्जज होने का यानी कीमती होने का इंतजार कर रहा था कि लड़ाई शुरू होगी तो घोड़े की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो और ज्यादा कीमत के साथ वो इसे बेच सकेगा। तो ये माना है इल्ला अन्नहु यंतज़िरु इज़्ज़तहु, मगर ये कि वो इस घोड़े के मुअज्जज होने का इंतजार कर रहा था। आगे देखिए वला युसहमु लिल ममलूकी वला इमरअतिन वला सबीयिन वला मजनूनिन वला ज़िम्मीयिन, भाई अब उन लोगों का जिक्र आ गया जिनको पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा। बाले मुसलमान मर्द अगर पैदल है तो उसको एक हिस्सा, अगर घुड़सवार है तो उसको दो हिस्से मिलेंगे, लेकिन अगर कोई बच्चा है या मजनून है या औरत है या कोई जिम्मी है और इन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया है तो फिर इनको पूरा हिस्सा तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता कुछ माल इनको भी दिया जाएगा। तो कहते हैं वला युसहमु लिममलूकिन, और हिस्सा नहीं निकाला जाएगा ममलूक के लिए यानी गुलाम और बांदी के लिए, वला इमरअतिन और ना किसी औरत के लिए, वला सबीयिन और ना किसी बच्चे के लिए, वला मजनूनिन और ना किसी मजनून के लिए, वला जिम्मीयिन और ना किसी जिम्मी के लिए, वला कि युरज़ख़ु लहुम अला हसबी मा यरल इमाम, रज़ख़ा यरज़ख़ु के माने हैं थोड़ा सा माल देना, हिस्से में से थोड़ा सा माल देना, वलाकिन युरज़ख़ु लहुम, लेकिन इनको थोड़ा सा माल दिया जाएगा, अला हसबी मा यरल इमाम, उसी के मुताबिक जो इमाम की राय हो, लिमा रुविया बवजह उस हदीस के जिसको रिवायत किया गया है, अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम कान ला युसिमु लिन्निसाई वस्सिबयान वल अबीद वलाकिन कान यरज़ख़ु लहुम, बवजह उस हदीस के जिसको रिवायत किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला युसहिमु लिन्निसाई, कि वो हिस्सा नहीं निकालते थे औरतों के लिए, वस्सिबयानि वल अबीदी और बच्चों और गुलामों के लिए, वलाकिन कान यरज़ख़ु लहुम, लेकिन उनको हुजूर थोड़ा सा माल देते थे, वलम मस्तान अलैहि सलातु वस्सलाम बिल यहूदी अलल यहूदी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद ली यहूदियों से यहूदियों के मुकाबले में, खैबर के अंदर बाज यहूदियों से हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदद ली दूसरे यहूदियों के मुकाबले में, तो कहते हैं वलम मस्ताना अलैहि सलातु वस्सलाम बिल यहूदी अलल यहूदी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के खिलाफ यहूदियों से मदद ली, लम युअतिहिम शैअम मिनल गनीमती, तो उनको गनीमत में से कुछ नहीं दिया, उनको गनीमत में से कुछ नहीं दिया। साहिब हिदायत बतलाएंगे कि भाई ये माना नहीं कि उनको कुछ माल भी नहीं दिया, माना यह है कि गनीमत में से बाकायदा उनको हिस्सा नहीं दिया, माना क्या है बाकायदा हिस्सा नहीं दिया, हां थोड़ा सा माल दिया। देखो खुद बतला रहे हैं कहते हैं यानी अन्नहु लम युसहिम लहुम, यानी हुजूर ने उनके लिए हिस्सा नहीं निकाला, थोड़ा सा माल तो दिया लेकिन बाकायदा हिस्सा नहीं दिया। वली अन अल जिहाद इबादतुन, और नीज इसलिए क्योंकि जिहाद इबादत है, व जिम्मी लैस मिन अहलिल इबादती, और जिम्मी जो है वो तो अहले इबादत नहीं है लिहाजा उसको पूरा हिस्सा नहीं दिया जा सकता। व सबी वल मरअतु आजिज़ान अनहु, और बच्चा और औरत जो है वो तो लड़ाई से आजिज हैं, व लिहाजा लम यलहकहुमा फर्ज़ुहु, और इसीलिए इनके साथ इस जिहाद का फर्ज लाहिक नहीं है, यानी इन पर जिहाद फर्ज नहीं है। ये चूंकि बच्चा और औरत तो लड़ाई से आजिज हैं लिहाजा इसीलिए इन पर जिहाद फर्ज भी नहीं है। ये माना है, कहते हैं वसबियु वलमर अतु आजिजानी अनहु, और बच्चा और औरत जो है वो जिहाद से आजिज हैं, वलिहादा लम यलहक हुमा फर्जुहु, इसीलिए जिहाद का फर्ज इनके साथ लाहिक नहीं, यानी जिहाद इन पर फर्ज नहीं है। वल अब्दुल्ला युमक्किनुहुल मौला, और गुलाम जो है उसको तो आका कुदरत नहीं देगा, आका जिहाद की इजाजत नहीं देगा। वलहू मनउहू, और नीस आका के लिए जायज है उसको रोकना, आका उसको लड़ाई से रोक सकता है। इल्ला अन्नहु युर्ज़ख़ु लहुम, मगर यह कि इन सबको थोड़ा सा हिस्सा दिया जाएगा, ये जो जिम्मी है गुलाम है ये औरतें और बच्चे हैं जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया है, तो कहते हैं इल्ला अन्नहु युर्ज़ख़ु लहुम, मगर यह कि इनको थोड़ा सा माल दिया जाएगा। तहरीज़न अलल क़िताली, लड़ाई पर उभारने के लिए, मा इज़हार इन्हिताति रुतबतिहिम, इन्हिताद का माना है पस्त होना, मा इजहार इन हिताति रुतबतिहिम, साथ इनके रुतबे के कम होने का इजहार करते हुए, यानी इनको कुछ माल दे देंगे ताकि लड़ाई पर तहरीज भी हो जाए, कि इनको लड़ाई पर भी उभारा जाए और इनका रुतबा कम होने का इजहार भी किया जाए। ये माना है इल्ला अन्नहु युर्ज़ख़ु लहुम तहरीज़न अलल क़िताली, मगर यह कि इनको थोड़ा सा माल दिया जाएगा लड़ाई पर इनको उभारने के लिए, मा इजहार इन्हिताति रुतबतिहिम, और साथ इनके रुतबे के कम होने का इजहार करते हुए। वल मुकातबु बिमंज़िलतिल अब्दी, और मुकातब जो है वो गुलाम के दर्जे में है, भाई मुकातब वो गुलाम जिसे आका ने अक़्द किताबत कर लिया है कि मसलन दो साल तक हर महीने तुम 1,00,000 रुपया ले आओ तो तुम आजाद हो, तो ये मुकातब आपने पढ़ा है, ये आजाद आदमी की तरह हो गया है, आका इससे अब जबरन खिदमत नहीं ले सकता, ये जाएगा जाकर पैसे कमाएगा और अपने आप को आजाद करवाएगा, लेकिन अगर मुकातब आजिज आ जाए तो फिर वो पहले जैसा गुलाम बन जाएगा। तो कहते हैं वल मुकातब भी मंजिलतिल अब्दी, और मुकातब जो है वो भी आम गुलाम के दर्जे में है, लिकियाम रिक, गुलामी पाए जाने की वजह से, व तवहुमी आजजी ही, और इसके आजिज होने के वहम की वजह से, भाई मुकातब का आजाद होना तो यकीनी नहीं, आजाद होना यकीनी नहीं, अगर ये कमाई से आजिज आ गया तो ये फिर पहले जैसा गुलाम बन जाएगा, और जब फिर पहले जैसा गुलाम बन जाएगा तो अब इसका आका इसको लड़ाई से मना कर सकता है, लिहाजा मालूम हुआ ये मुकातब आम गुलाम के दर्जे में है। ये माना है लिकियाम रिक, गुलामी पाए जाने की वजह से, व तवहुमी आजजी ही, और इसके आजिज आने के वहम की वजह से, फयम नउहुल मौला अनिल खुरूज इलल किताली, तो इसका आका इसको मना करेगा लड़ाई की तरफ निकलने से, जब यह आजिज आ जाएगा तो इसका आका इसे मना करेगा। सुम्मल अब्दु इन्नमा युर्ज़ख़ु लहू इदा कातला, जी अब बतलाने लगे हैं कि थोड़ा सा गुलाम को माल देंगे कब देंगे, क्या वो लड़ाई के वक्त हाजिर हो तो उसे उसका हिस्सा देंगे या वो बाकायदा लड़ाई में हिस्सा ले। कहते हैं भाई अगर वो बाकायदा लड़ाई में हिस्सा ले फिर उसको कुछ माल देंगे। कहते हैं सुम मलअब्दु इन्नमा युर्ज़ख़ु लहू इदा कातला, और फिर गुलाम को कुछ माल दिया जाएगा जब वो लड़ाई करे, लिअन्नहु दखला लिखिदमतिल मौला, इसलिए क्योंकि वो तो लश्कर में दाखिल हुआ है अपने आका की खिदमत के लिए, लिहाजा खिदमत की वजह से उसको माल नहीं दिया जाएगा। भाई फसारा का ताजिरी, तो वो भी ताजिर की तरह हो गया, और जो शख्स तिजारत के लिए आया है उसका हिस्सा भी माले गनीमत में नहीं होता। तो कहते हैं फसारा का ताजिरी, तो ये गुलाम भी ताजिर की तरह हो गया तो इसका भी हिस्सा नहीं होगा। वल मर अतु तुर्ज़ख़ु लहा इदा कानत तुदा विलजर हा वतकूमु अलल मर्ज़ा, भाई औरत याद रखो, औरत औरत तो लड़ाई नहीं कर सकती, तो वो अगर लोगों का इलाज मुआलजा करती है और मरीजों की देखभाल करती है तो उसका यही अमल उसकी तरफ से किताल और लड़ाई है, तो इसकी वजह से उसको भी माल दिया जाएगा। तो कहते हैं वलमर अतु तुरज़ाकुलहा, और औरत को कुछ माल दिया जाएगा। इजा कानत तुदाविल जरहा, जरहा जमा है जरीह की, जख्मी को कहते हैं। इजा कानत तुदाविल जरहा, जब वो जख्मियों का इलाज मुआलजा करे। व तकूमु अलल मर्ज़ा, और वो मरीजों की देखभाल करे। लिअन्नहा आजिज़तुन अन हकीकतिल क़िताली, इसलिए क्योंकि वो हकीकी लड़ाई से तो आजिज है। फतुकामु हाज़ा नौउ मिनल इआनति मकामल क़िताली, तो इस किस्म की जो मदद है वो लड़ाई के कायम मकाम हो जाएगी। बिखिलाफिल अब्दि, बखिलाफ गुलाम के, कि गुलाम की खिदमत की वजह से उसको माल नहीं मिलेगा, बल्कि वो हकीकत में लड़ाई कर सकता है तो उसमें फिर हकीकतन लड़ाई करने पर उसको कुछ माल दिया जाएगा। कहते हैं बेखिलाफ इल अब्दी, बखिलाफ गुलाम के। लिअन्नहु कादिरुन अला हकीकतिल किताली, इसलिए क्योंकि वो हकीकी लड़ाई पर कादिर है। वह जिम्मी इन्नमा युर्ज़ुकु लहू इज़ा क़ातला, और जिम्मी को भी कुछ माल दिया जाएगा जब उसने लड़ाई की हो। औ दल्ला अला तरीक़ी, या उसने रास्ते पर रहनुमाई की हो। भाई जिम्मी ने लड़ाई की है तो इसको भी कुछ माल दिया जाएगा, और अगर इसने मुसलमानों की रास्ते के अंदर रहनुमाई की, मसलन मुसलमानों को ले गया वो ऐसे रास्तों पर जहां से मुसलमानों ने हमला किया और उनको फौरन फतह हासिल हो गई, तो अगर इस किस्म की मदद की है तो याद रखो फिर इस जिम्मी को हिस्से से भी ज्यादा माल दिया जा सकता है जी। अगर लड़ाई की है फिर हिस्से से कम ही माल देंगे, क्योंकि ये लड़ाई जिहाद का हिस्सा है और जिहाद के अंदर जिम्मी को मुसलमान के बराबर माल नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर इसने रास्ते की रहनुमाई की है, मुसलमानों को ले गया कि फुला फुला तरफ से अगर तुम किले के आओ तो तुम आराम से इसको फतह कर लोगे, तो अगर उसने रास्ते पर रहनुमाई की है तो यह तो जिहाद का हिस्सा नहीं है, जिहाद का हिस्सा नहीं है। लिहाजा इसके अंदर जितना भी इनाम इमाम देना चाहे उसको दे सकता है। बात समझ में आ गई, जो चीज जिहाद का हिस्सा है उसमें मुसलमानों से कम ही माल देंगे, मुसलमानों के बराबर नहीं देंगे, लेकिन जो हिस्सा जिहाद का नहीं है उसके अंदर ज्यादा माल भी इसको दिया जा सकता है। तो कहते हैं वज़िम्मी इन्नमा युर्ज़ुकु लहू इज़ा क़ातला, और जिम्मी जो है उसके लिए थोड़ा सा माल निकाला जाएगा जब वो लड़ाई करे। औ दल्ला अला तरीक़ि वलम युक़ातिल, या इसने रास्ते पर रहनुमाई की और लड़ाई नहीं की तो फिर भी माल दिया जा सकता है। लिअन्न फीहि मनफअतन लिलमुस्लिमीन, इसलिए क्योंकि इसके लड़ने में या इसकी दलालत में भी मुसलमानों का फायदा है। इल्ला अन्नहु युज़ादु अलस्सहमि फिद्दलालति इज़ा कानत फीहि मनफअतुन अज़ीमतुन, इल्ला अन्नहु युज़ादु अलस्सहमि, मगर यह कि इसके लिए हिस्से पर भी ज्यादती की जा सकती है। फिद्दलालति, रहनुमाई करने में। इज़ा कानत फीहि मनफअतुन अज़ीमतुन, जब उसके अंदर अजीम फायदा हो। भाई वला युबल्लगु बिहि सहमु इज़ा क़ातला, और हिस्से तक नहीं पहुंचाया जाएगा जब यह लड़ाई करे। जब यह लड़ाई करे तो हिस्से तक नहीं पहुंचाएंगे, यानी अगर पैदल इसने लड़ाई की है तो पैदल के हिस्से से कम देंगे इसे, और अगर इसने सवार होकर लड़ाई की है तो सवार के हिस्से से कम माल इसको देंगे। तो कहते हैं वला युबल लघु भी हिस्सा इदा कातला, और हिस्से तक नहीं पहुंचाया जाएगा जब ये जिम्मी लड़ाई करे। लिअन्नहु जिहादुन, इसलिए क्योंकि लड़ाई जो है वो तो जिहाद है। वल अव्वलु लैसा मिन अमलिही, और अव्वल जो है यानी दलालत करना वो तो जिहाद के अमल में से नहीं है, वो जिहाद के अमल में से नहीं है, लिहाजा उसमें ज्यादा भी दिया जा सकता है। वला युसव्वा बैनहू व बैनल मुस्लिमी फी हुक्मिल जिहादी, और बराबरी नहीं की जाएगी जिम्मी और मुसलमान के दरमियान जिहाद के हुक्म में, यानी लड़ाई के अंदर मुसलमान जितना माल हम इसे नहीं देंगे। आगे देखिए व अमल खुमुसु फयुकस्समु अला सलासती असहुमिन, भाई चार खुमुस जो थे वो गाजियों का हक था, तो गाजियों में किस किस को कितना हिस्सा देंगे वो साहिब हिदाया ने बयान फरमा दिया। अब वो जो खुमुस निकाला था पांचवां हिस्सा, अब उसकी तफसील बयान करने लगे हैं। कहते हैं वह अमल खुमुसु और बाकी खुमुस जो है फयुकस्समु अला सलासती असहुमिन तो उसको तीन हिस्सों पर तकसीम किया जाएगा। सहमुन लिल यतामा एक हिस्सा यतीमों के लिए होगा, व सहमुन लिल मसाकीना और एक हिस्सा मसाकीन के लिए यानी फुकारा के लिए होगा, व सहमुन लिबनिस सबीली और एक हिस्सा मुसाफिरों के लिए होगा। और याद रखना ये सारे मसारिफ हैं, मुस्तहिक नहीं
जी।
अगर मुस्तहिक हो तो फिर तो हर एक को देना पड़ेगा, लेकिन ये सारे मसारिफ हैं तो इमाम चाहे इनमें से एक ही मसरफ पर सारा माल खर्च कर दे चाहे तीनों पर खर्च करे, ये इमाम की मर्जी है भाई। तो कहते हैं वसह मुनलिबन सबीली और एक हिस्सा मुसाफिर का है, यद खुलू फुकारा उजविल कुरबाफीम और हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से जो फुकारा हैं जो मोहताज हैं वो भी इन्हीं के अंदर दाखिल हैं इन्हीं तीन किस्मों में। मैंने आपको बतलाया भाई कि आयत के अंदर अल्लाह का नाम भी जिक्र है तो वो बतौर बरकत के है, और हुजूर अलैहिस्सलाम का हिस्सा उनकी वफात की वजह से खत्म हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों का हिस्सा भी खत्म क्योंकि उनका हिस्सा हुजूर की मदद की वजह से था और हुजूर का इंतकाल हुआ तो उन रिश्तेदारों की वो जो हुजूर की मदद करते थे वो मदद भी क्या हो गई खत्म और बाकी तीन किस्में रह गईं तो उनका हिस्सा है। अलबत्ता हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से अगर कोई फुकारा और मोहताज हैं तो वो भी इन्हीं तीन किस्मों के अंदर दाखिल होंगे। अगर वो यतीम हैं तो वो यतीमों में दाखिल हो गए, और अगर वो मोहताज और मिस्कीन हैं तो वो मसाकीन में दाखिल हो गए, और अगर वो मुसाफिर हैं तो मुसाफिरों के अंदर दाखिल हो गए। अलबत्ता आम यतीमों आम मिस्कीनों और आम मुसाफिरों पर हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वालों को मुकद्दम रखा जाएगा भाई। तो कहते हैं यदखुलु फुकारा उजविल कुर्बा फीहिम, हुजूर अलैहिस्सलाम के वो करीबी रिश्तेदार जो फुकारा हैं वो भी इन्हीं तीन किस्मों में दाखिल हो गए। व युकद्दमूना और हुजूर के रिश्तेदारों को इन लोगों पर मुकद्दम किया जाएगा। वला युदफाउ इला अग्नियाइहिम और हुजूर के रिश्तेदारों में से जो मालदार हैं उनको नहीं दिया जाएगा। वकाल शाफिउ रहिमहुल्लाह, तो मालूम हुआ भाई इधर देखिए हमारे नजदीक मालूम हुआ अब खुमुस के तीन मसरफ हैं भाई, कितने मसरफ हैं तीन, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं खुमुस के अभी भी पांच मसरफ हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का हिस्सा खुलफा को दिया जाएगा और वो उस हिस्से को फिर आवाम पर खर्च करेंगे, और हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार चाहे मालदार हो चाहे गैर मालदार उनको भी हिस्सा मिलेगा क्योंकि आयत में उनका भी जिक्र है, और इसी तरह यतीमों मिस्कीनों और मुसाफिरों का भी हिस्सा है। तो मालूम हुआ हमारे नजदीक अब खुमुस के मसारिफ तीन हैं, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक अब भी खुमुस के पांच मसारिफ हैं भाई। तो कहते हैं वकाल शाफिउ रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं लहुम खुमुसुल खुमुसी, उनके लिए खुमुस का खुमुस है, खुमुस का खुमुस भाई माले गनीमत में से पांचवां हिस्सा निकाल लिया गया ये है खुमुस, और फिर इस खुमुस के कुरान में कितने मसरफ जिक्र हुए हैं पांच, तो जब इस खुमुस को इन पांच में तकसीम करेंगे तो हर एक को खुमुस का खुमुस मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वकाल शाफिउ रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं लहुम खुमुसुल खुमुसी के हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों के लिए खुमुस का पांचवां हिस्सा होगा। यस्तवी फीहि गनीयुहुम व फकीरुहुम और इसमें इनके मालदार और फकीर बराबर हैं यानी सबको मिलेगा। व युकस्समु बैनहुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैयैनि और इसको तकसीम किया जाएगा उनके दरमियान के मुजक्कर के लिए दो मुअन्नस के बराबर हिस्सा होगा यानी मर्दों को औरतों से दुगना हिस्सा दिया जाएगा। वयकूनु लिबनी हाशिमिन व बनिल मुत्तलिबी दून गैरिहिम और हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वालों में से सिर्फ बनु हाशिम और बनुल मुत्तलिब को दिया जाएगा औरों को नहीं। भाई याद रखो हुजूर अलैहिस्सलाम बेटे हैं अब्दुल्लाह के और वो बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के, मुत्तलिब इसके अंदर याद रखो त्वा मुशद्दद है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नसब किस तरह है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, तो ये जो हाशिम की औलाद है ये बनू हाशिम कहलाते हैं भाई, ये हाशिम हुजूर अलैहिस्सलाम के परदादा हैं। और याद रखना ये पांच भाई थे भाई, तवज्जो है, ये हाशिम जो है इनके चार और भाई भी थे, तो ये कुल पांच भाई थे। एक भाई जो है उन्होंने अपने पीछे औलाद नहीं छोड़ी, बाकी चार भाई जो हैं उनकी औलाद हुई, और ये सारे हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वाले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक हाशिम और एक उनके भाई मुत्तलिब, इनकी जो औलाद है सिर्फ इनका हिस्सा होगा। यानी बनू हाशिम, बनू हाशिम का क्या माना, हाशिम के बेटे, और बनुल मुत्तलिब का क्या माना, मुत्तलिब के बेटे। यानी इन दो भाइयों की जो औलाद है खुमुस में से उनको हिस्सा मिलेगा, जबकि बाकी दो भाई जो हैं वो उनका हिस्सा नहीं होगा। भाई बात समझ में आ गई, और उसकी वजह भी जिक्र करेंगे कि ये जो बनु हाशिम थे और बनुल मुत्तलिब थे, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे हर मामले में, लड़ाई तो नहीं की लेकिन बाकी हर एतबार से हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे भाई। और इन्हीं की वजह से कुफार की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचाए भाई। तो लिहाजा ये बनु हाशिम और बनुल मुत्तलिब इनका हिस्सा होगा माले गनीमत में। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, और हुजूर के परदादा के जो भाई हैं यानी हाशिम के जो भाई हैं उनका नाम है मुत्तलिब भाई। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान में से बनु हाशिम और बनुल मुत्तलिब को खुमुस में से हिस्सा देंगे। तो कहते हैं वह यकूनुली बनी हाशिमिन व बनिल मुत्तलिबी दूना गैरिहिम, और ये हिस्सा जो है ये बनु हाशिम और बनुल मुत्तलिब के लिए होगा, दूना गैरिहिम, ना कि इनके अलावा के लिए, लिकौलिही ताला, अल्लाह ताला के इस कौल की वजह से इमाम शाफी रहमतुल्लाह की दलील चल रही है। वो फरमाते हैं वलिदिल कुरबा, कि कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि खुमुस किसके लिए है, हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों के लिए है। तो कहते हैं लिकौलिही ताला वलिदिल कुरबा, अल्लाह ताला के कौल वलिदिल कुरबा की वजह से, मिन गैरी फसलिन बैनल गनी वल फकीरी, बगैर कोई फर्क किए मालदार और फकीर में। आयत के अंदर मुतलकन हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों का जिक्र है, इसमें अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं किया गया। और याद रखो अहनाफ जो हैं वो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के साथ इस बात में तो इत्तेफाक करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वालों में से सिर्फ बनु हाशिम और बनुल मुत्तलिब को मिलेगा। इस बात में तो हम भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह के साथ इत्तेफाक करते हैं। अलबत्ता इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इनमें से जो मालदार हैं उनको भी मिलेगा। इसमें अहनाफ इमाम शाफी रहमतुल्लाह से इख्तिलाफ करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान में से जो फुकारा हैं उनको खुमुस में से हिस्सा दिया जाएगा, जो मालदार हैं उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अब आगे हमारी दलील आ गई वलना, और हमारी दलील यह है कि अनल खुलफा अल अरबातर राशिदीन रजी अल्लाह ताला अनहुम कसमूहु, कि खुलफाए राशिदीन जो हैं उन्होंने इस खुमुस को तकसीम किया, अला सलासती असहुमिन, तीन हिस्सों पर। हमारी दलील क्या है कि खुलफाए राशिदीन ने भी इस खुमुस को तीन हिस्सों पर तकसीम किया। तो कहते हैं वलाना, और हमारी दलील यह है कि अनल खुलफा अल अरबातर राशिदीन रजी अल्लाह ताला अनहुम कसमूहु अला सलासती असहुमिन, के चारों खुलफाए राशिदीन ने इस खुमुस को तकसीम किया तीन हिस्सों पर, अला नहवी मा कुलनाहु, उसी तरीके पर जो हमने कहा है, जैसे हमने जिक्र किया, वकफा बिहिम कुदवतन, और ये काफी हैं बेतबार पेशवा होने के, यानी इनकी इक्तिदा हमारे लिए काफी है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी अपनी और खुलफाए राशिदीन की पैरवी और इत्तेबा का हुक्म दिया है भाई। तो कहते हैं वकफा बिहिम कुदवतन, और ये खुलफाए राशिदीन काफी हैं बेतबार पेशवा होने के, वकाल अलैहि सलातु वस्सलाम, और नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या माशरा बनी हाशिमीन, ए बनु हाशिम के खानदान वालो, इन्नल्लाह ताला करीहा लकुम गुसालतन नासि व औसाखहुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नापसंद किया गुसालतन नासि, गुसाला भाई याद रखो, गुसाला किसी चीज को धोने से जो मैल कुचैल निकलता है उसको गुसाला कहते हैं। वो जो किसी चीज की धोवन है, वो जो किसी चीज का मैल कुचैल धोने से निकला है उसको गुसाला कहते हैं। और औसाफ जो है ये भी मैल कुचैल को कहते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या माशरा बनी हाशिमिन, ए बनु हाशिम के खानदान वालों, इन्नल्लाह ताला करिहलकुम गुसालतन नासि व औसाखहुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लोगों का गुसाला और उनके मैल कुचैल को नापसंद किया है। भाई ये जकात ये माल का मैल कुचैल है, तो लिहाजा हुजूर अलैहि सलाम के खानदान वालों को जकात देना जायज नहीं है। भाई ए बनु हाशिम के खानदान वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए लोगों का गुसाला और उनके मैल कुचैल को नापसंद किया है। वह अवज़कुम मिन्हा बिखुमुसिल खुमुसी, और उसके इवज तुम्हें खुमुसुल खुमुस दिया है, उसके इवज में तुम्हें खुमुसुल खुमुस यानी खुमुस का पांचवां हिस्सा दिया है। दलील अभी चल रही है भाई, वल इबज़ु इन्नमा यस्बुतु फी हक़्क़ि मन यस्बुतु फी हक़्क़िहिल मुअव्वज़ु। हम कहते हैं देखो इस हदीस के अंदर आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के खानदान वालों से क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लोगों के मैल कुचैल को नापसंद किया है, यानी तुम्हें जकात दी जाए ये अल्लाह को पसंद नहीं, बल्कि इसके बदले में अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुमुस का पांचवां हिस्सा मुकरर किया है। और जकात किसको दी जाती है? फुकारा को। तो मालूम हुआ जकात का जो इवज है यानी खुमुसुल खुमुस वो भी किसको दिया जाएगा? जो इनके फुकारा हैं। भाई दलील समझ में आ गई, ये माना है वल इबज़ु इन्नमा यस्बुतु फी हक़्क़ि मन यस्बुतु फी हक़्क़िहिल मुअव्वज़ु, और इवज तो साबित होता है उसी के हक में जिसके हक में मुअव्वज़ यानी जकात साबित हो, और जकात तो सिर्फ फकीर को दी जाती है, लिहाजा मालूम हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से जो फुकारा हैं उन्हीं को खुमुस दिया जाएगा। तो कहते हैं वल इवज़ु इन्नमा यस्बुतु फी हक़्क़ि मन यस्बुतु फी हक़्क़िहिल मुअव्वज़ु, और इवज़ तो उसी के हक में साबित होगा जिसके हक में मुअव्वज़ यानी जकात साबित होगी। वहुमुल फुकारा, और वो फुकारा हैं, फुकारा को जकात दी जाती है। मालूम हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान में से जो फुकारा हैं खुमुस का खुमुस भी उन्हीं को मिलेगा। वन्नबी अलैहि सलातु वस्सलामु आताहुम लिन्नुसरति, और नीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को जो अता किया लिन्नुसरति वो मदद की वजह से था। अला तारा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु अल्लाह, कि हुजूर अलैहि सलाम ने इल्लत बयान फरमाई। फकाल, पस फरमाया इन्नहुम लन यज़ालू माई हाकज़ा फिल जाहिलियति वल इस्लाम। भाई ये रिवायात में आता है भाई ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुमुस में से बनु हाशिम वालों को भी हिस्सा दिया और बनुल मुत्तलिब वालों को भी हिस्सा दिया। तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरह हज़रत जुबैर इब्ने मुतइम रजी अल्लाह तआला अन्हु ये भी हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हैं, अलबत्ता ये बनु हाशिम या बनुल मुत्तलिब में से नहीं है बल्कि उनके भाइयों की औलाद में से हैं। हाशिम के जो दूसरे भाई थे उनकी औलाद में से हैं। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह, आपने बनु हाशिम को भी हिस्सा दिया, आपने बनुल मुत्तलिब को भी हिस्सा दिया, हम भी तो आपके उतने ही करीबी रिश्तेदार हैं, हम भी तो आपके उतने ही करीबी रिश्तेदार हैं, आपने हमें इसमें से हिस्सा नहीं दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस मौका पर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करते हुए फरमाया कि ये लोग हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहे जाहिलियत में भी और इस्लाम के अंदर भी, यानी इन्होंने मेरी बड़ी मदद की है इसलिए इनको हिस्सा दिया गया है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वन नबी अलैहि सलातु वस्सलामु आताहुम लिन्नुसरति, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रिश्तेदारों को नुसरत और मदद की वजह से दिया। अला तरा, क्या आप देखते नहीं, अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु अल्लाह, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लत बयान फरमाई यानी इसकी वजह बयान फरमाई। फकाला, तो फरमाया इन्नहुम लन यज़ालू माई हाकज़ा फिल जाहिलियति वल इस्लामी, कि ये हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहे जाहिलियत में और इस्लाम में। वशब्बका बैना असाबिही, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों में तशबीक फरमाई, यानी एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल किया और फरमाया कि ये लोग हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहे हैं जाहिलियत में भी और इस्लाम में भी। तो कहते हैं दल्ला अला अन्नल मुरादा मीनन नस्सी, इसने इस बात पर दलालत की कि नस के अंदर जो मुराद है कुर्बुन नुसरती ला कुर्बुल कराबती, वो मदद वाली कुर्बत है न कि रिश्तेदारी वाली कुर्बत। आयत में क्या आया वली दिल कुर्बा, तो यहां कुर्बत से कौन सी कुर्बत मुराद है? रिश्तेदारी वाली कुर्बत मुराद नहीं है बल्कि नुसरत और मदद वाली कुर्बत मुराद है। यह माना है कि दल्ला अला अन्नल मुराद मिनन नस्सी, इसने इस बात पर दलालत कर दी कि नस के अंदर यानी आयत के अंदर मुराद जो है कुर्बुन नुसरती ला कुर्बुल कराबती, वो मदद की कुर्बत है रिश्तेदारी की कुर्बत नहीं है। आगे देखिए قال فاما ذكر الله تعالى في الخمس, और बाकी अल्लाह ताला का जिक्र खुमुस के अंदर فانه لافتتاح الكلام, वो कलाम के आगाज के लिए है تبرکن باسمه, अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करते हुए। खुमुस के अंदर जो अल्लाह का नाम जिक्र किया गया فان لله خمسه, तो ये अल्लाह का नाम बतौर बरकत के जिक्र किया गया। तो कहते हैं फइन्नहु लिफ्तिताहिल कलामी तबर्रुकम बिस्मिही, ये कलाम के आगाज के लिए है अल्लाह के नाम से बरकत हासिल करते हुए। वसहमुन नबी अलैहि सलातु वस्सलामु सकता बिमौतिही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा साकित हो गया उनके इंतकाल की वजह से। कमा सकता सफीयो, जैसे कि सफी साकित हो गया। सफी का माना है चुना हुआ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि वो माल गनीमत में से कोई भी चीज अपने लिए पसंद कर सकते हैं। मसलन उनको कोई जीरा पसंद आ गई, या उनको कोई घोड़ा पसंद आ गया, या कोई तलवार पसंद आ गई, या कोई बांदी पसंद आ गई, या कोई गुलाम वगैरह पसंद आ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया था कि वो माल गनीमत के अंदर तकसीम से पहले जो भी चीज पसंद करना चाहें वो पसंद कर सकते हैं अपने लिए। भाई इसको सफी कहते थे। सफी का माना चुना हुआ, यानी चुनी हुई चीज जो है सफीयुन, सफीयुन। तो कहते हैं वसहमुन नबी अलैहि सलातु वस्सलामु सकता बिमौतिही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा साकित हो गया हुजूर अलैहि सलाम की मौत की वजह से। कमा सकता सफीयु, जैसे कि सफी साकित हो गया। सफी किसके लिए होता था? हुजूर के लिए। तो हुजूर का इंतकाल हुआ तो सफी भी साकित हो गया। लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु कान यस्तहिक्कुहु बिरिसालतिही, इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम जो हैं वो इस हिस्से के मुस्तहिक होते थे बिरिसालतिही, अपनी रिसालत की वजह से, पैगंबर होने की वजह से। मालूम हुआ कुरान में जो अल्लाह फरमाते हैं फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल, तो यहां रसूल को जिक्र किया गया, और रसूल मुश्तक है रिसालत से, और मुश्तक पर जब कोई हुक्म लगाया जाए तो उसकी इल्लत मुश्तक मिन्हु, यानी वो मस्तर होता है। मालूम है हुजूर अलैहि सलाम को जो खुमुस में से हिस्सा दिया जाता था वो हुजूर के पैगंबर होने की वजह से मिलता था, और हुजूर अलैहि सलाम जब इंतकाल फरमा गए तो अब वो हिस्सा खुलफा को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हिस्सा हुजूर को मिलता था किस वजह से? रिसालत की वजह से, और हुजूर के बाद तो कोई रसूल नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं लिअन्नहु अलैहि सलातु वस्सलामु काना यस्तहिक्कुहु बिरिसालतिही, और इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहि सलाम जो हैं अपने हिस्से के मुस्तहिक होते थे रसूल होने की वजह से। वला रसूल बादहु, और हुजूर अलैहि सलाम के बाद तो कोई रसूल नहीं, लिहाजा वो हिस्सा किसी खलीफा वगैरह को भी नहीं मिलेगा। वस्सफीयु शैउन, मतन में आया था कमा सकता सफीयु, अब साहिब हिदाया उसकी वजाहत फरमा रहे हैं। कहते हैं वस्सफी युशय उनकान अलैहि सलातु वस्सलामु यस्तफीहि लिनफ्सिही मिनल गनीमती, और सफी जो है ऐसी चीज होती जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए चुन लेते थे मिनल गनीमती, गनीमत में से। मिसलु दिरइन औ सैफिन औ जारियतिन, जैसे कि जीरा है, दिर उन भाई जीरा लोहे की जो कमीज होती थी, मिसल दिर इन जैसे कि जीरा है, और सैफिन या तलवार है, और जारियतिन या बांदी है। वकाल शाफी रहमहुल्ला, और इमाम शाफी रहमहुल्ला फरमाते हैं, युसरफु सहमुर रसूल इलल खलीफति, के खर्च किया जाएगा हुजूर अलैहिस्सलाम के हिस्से को खलीफा की तरफ, यानी हुजूर का हिस्सा वो खलीफा को मिलेगा। वल हुज्जतु अलैहि मा कद्दमनाहू, और उनके खिलाफ हुज्जत जो है, उनके खिलाफ दलील जो है, मा कद्दमनाहू, वो चीज है जिसको हमने मुकद्दम जिक्र कर दिया, यानी खुलाफाए राशिदीन का अमल। खुलाफाए राशिदीन खुमुस में से अपना हिस्सा नहीं निकालते थे, बल्कि तीन मसरफों पर उसको खर्च फरमाते थे। भाई आगे देखिए, वसहमु जविल कुर्बा कानू यस्तहिकूनहू फी ज़मनि नबी अलैहि सलातु वस्सलामु बिन्नुसरती। अब भाई वो वजह जिक्र कर रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जो रिश्तेदारों को हिस्सा मिलता था वो हुजूर की मदद की वजह से मिलता था। पीछे शरा के अंदर तो यह बात जिक्र कर दी साहिब हिदायत ने, लेकिन मतन में तो यह बात अभी जिक्र नहीं हुई थी, अब उसको जिक्र कर रहे हैं मतन के अंदर। कहते हैं वसहमु ज़विल क़ुरबा, और हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों का जो हिस्सा है, कानू यस्तहिकूनहु फी ज़मनिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में उसके मुस्तहिक होते थे, बिन्नुसरती, मदद करने की वजह से, लिमा रवैना, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी। भाई काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, वबादहू बिल फकरी, और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद हुजूर के रिश्तेदारों को हिस्सा मिलेगा बिल फकरी, फकर की वजह से, मोहताज होने की वजह से। काल अल अब्दुज़ाइफ, इस काल अल अब्दुज़ाइफ से मुराद साहिब हिदाया है। قال العبد الضعيف عصمه الله, अल्लाह का कमजोर बंदा कहता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, هذا الذي ذكره قول الكرخي رحمه الله, ये जो साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया ये इमाम करखी रहमहुल्लाह का कौल है। भाई मतन में आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों को हुजूर की जिंदगी में मिलता था, इसलिए क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाते थे, और हुजूर के बाद अब वो इसके मुस्तहिक होंगे मोहताज होने की वजह से। यह साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया, और साहिब हिदायत फरमा रहे हैं यह इमाम करखी रहमतुल्लाह का कौल है। इमाम करखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से जो मोहताज हैं, इस खुमुस में से उन मोहताजों को भी दिया जाएगा। जबकि इमाम तहावी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से जो फुकारा हैं उनको भी खुमुस में से माल नहीं दिया जाएगा, उनको भी खुमुस में से माल नहीं दिया जाएगा। भाई वजह यह कि यह खुमुस जो है यह भी ज़कात के मिसल हो गया जी। क्यों ज़कात के मिसल कैसे हुआ? कहते हैं देखते नहीं, मसरफ को आप देख लें, यह सिर्फ किसको दिया जा रहा है? हुजूर के खानदान के फुकरा को। मालूम हुआ यह भी किसके माना में है? ज़कात के माना में है, और जब यह ज़कात के माना में है तो ज़कात देना तो इनको हराम है, लिहाजा इस खुमुस में से भी इनको हिस्सा देना हराम है। भाई तो कहते हैं हाद अल्लज़ी ज़करहू क़ौलुल करखी रहिमहुल्लाह, और ये जो साहिब कुदूरी ने मतन के अंदर जिक्र किया ये इमाम करखी रहिमहुल्लाह का कौल है। वकाल तहावी रहिमहुल्लाह, और इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, सहमुल फकीर मिनहुम साक़ितुन ऐज़न, के हुजूर के रिश्तेदारों में से जो फकीर है उसका हिस्सा भी साकित है, उसको भी नहीं मिलेगा। लिमा रवैना मिनल इजमाई, उस इजमा की वजह से जो हमने रिवायत कर दिया कि खुलफाए राशिदीन जो हैं इसके तीन हिस्से करते थे, खुलफाए राशिदीन इसके तीन हिस्से करते थे, मालूम हो हुजूर के रिश्तेदारों का हिस्सा वो नहीं निकालते थे। तो कहते हैं लिमा रवैना मिनल इजमाई, उस इजमा की वजह से जो हमने रिवायत कर दिया, वली अन्न फीही माना सदकती, और नीज इसलिए क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों के हिस्से के अंदर भी सदके और जकात वाला माना है। नजारन इलल मसरिफी, मसरफ की तरफ नजर करते हुए कि यह सिर्फ किसको मिलता है? फुकारा को। मालूम हुआ यह इसमें भी जकात वाला माना है। फयुहरमु कमा युहरमुल उमालतु, भाई हरामा यहरिमु के माने होते हैं महरूम करना, हरामा यहरिमु का क्या माना? महरूम करना। तो फयुहरमु, तो इनको महरूम किया जाएगा इससे, कमा युहरमुल उमालतु, जैसे कि इनको उमाला से महरूम किया जाता है। उमाला कहते हैं वो माल जो आमिलीन जकात को दिया जाता था भाई, जो लोग खलीफा की तरफ से मुकर्रर होते थे भाई और एक एक बस्ती जाते घूमते और लोगों से जकात इकट्ठी करके लाते थे, तो देखो वो अपना वक्त दे रहे हैं, कई कई दिन लगा रहे हैं जकात इकट्ठी करने में, तो उनको भी कुछ उसमें से माल दिया जाता था, उसको उमाला कहते थे। तो जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान वालों को जकात देना जायज नहीं, इसी तरह उनको ये उमाला उजरत के तौर पर यह उमाला देना भी जायज नहीं है। तो कहते हैं फयुहरमु कमा युहरमुल उमाला, तो इनको इस खुमुस से भी महरूम किया जाएगा जैसे इनको उमाला से महरूम किया जाता है। तो या आप मुजर्रद से पढ़ लें और आप चाहें तो बाबे तफ़ईल से भी पढ़ सकते हैं, फयुहर्रमु कमा युहर्रमुल उमाला, तो इन पर इस खुमुस को भी हराम करार दिया जाएगा जैसे कि उमाला को इन पर हराम करार दिया गया है। वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह, पहला कौल किसका था? इमाम करखी का। वो फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदान में से जो फुकारा हैं उनको ये माल दिया जा सकता है। तो कहते हैं वजहुल अव्वली, पहले कौल की जो वजह है, वकील हुवल असहु, और कहा गया है कि वो कौल ज्यादा सहीह है। उसकी दलील जो है मारूविया, वो हदीस है जिसको रिवायत किया गया है कि अन्ना उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु आतल फुकारा अमीनहुम, कि हज़रत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के जो रिश्तेदार फुकारा थे उनको देते थे, उनको हज़रत उमर रजियल्लाहु ताला अन्हु खुमुस में से देते थे भाई। फिर देख लीजिए तर्जमा, वजहुल अव्वली, पहले कौल की वजह, वकील हुवल असहु, और कहा गया है वो कौल ज्यादा सही है, मारूविया, उस पहले कौल की वजह जो है वो हदीस है जिसको रिवायत किया गया है कि अन्ना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आतल फुकारा अमीन हूं, कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से जो फुकारा होते थे उनको देते थे। वल इजमाउन अकदा अला सुकूति हक्किल अग्नियाई, और इजमा जो मुनाकिद हुआ है वो मालदारों का हक साकित होने पर है। भाई इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने दलील जिक्र की थी कि लिमा रवैना मिनल इजमाई, वो जो इजमा हमने रिवायत कर दिया कि खुलफाए राशिदीन सिर्फ तीन हिस्से करते थे, तो उसका जवाब दे रहे हैं कि खुलफाए राशिदीन का जो इजमा मुनाकिद हुआ था वो इनके मालदारों के हिस्से के साकित होने पर इजमा हुआ था, इनके जो फुकारा हैं उनके हिस्से के साकित होने पर इजमा नहीं, इसीलिए तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इनमें से जो फुकारा होते थे उनको दिया करते थे भाई। तो कहते हैं वल इजमा उन अकदा अला सुकूत हक्किल अग्नियाई, और इजमा मुनाकिद हुआ था इनमें से मालदारों के हक के साकित होने पर, अम्मा फुकारा उहुम, और बाकी इनमें से जो फुकारा हैं, यदखुलून फिल असनाफ सलासती, तो वो इन तीन किस्मों के अंदर ही दाखिल हैं, यानी वो यतीमों या मिस्कीनों या मुसाफिरों ही में दाखिल हैं। आगे देखिए, व इदा दखल अल वाहिदु अविल इस्नानी दार अल हर्बी, भाई दो चार मुसलमान गए दारुल हर्ब के अंदर और वहां कुछ माल छीन कर ले आए, तो क्या इसमें से भी खुमुस निकाला जाएगा? तो आपको बतलाएंगे कि नहीं, खुमुस माल गनीमत में से निकाला जाता है, और माल गनीमत उसे कहते हैं जिसे मुसलमान कुव्वत के जरिए छीन कर लाए, और ये दो चार जो है जो माल छीन कर लाए हैं इनको तो कोई कुव्वत हासिल नहीं है, ये इनको तो कोई कुव्वत हासिल नहीं है। देखो माल वहां से छीनते ही ये फौरन वहां से निकले हैं भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इदा दखल अल वाहिदु अविल इस्नानी दार अल हर्बी, और जब एक या दो अफराद दारुल हर्ब में दाखिल हुए, मुगीरीना, इस हाल में कि वो हमला करने वाले हैं, अगारा युगीरु इगारतन का क्या माना है? हमला करना, कि अगर एक या दो अफराद दारुल हर्ब में दाखिल हुए हैं, मुगीरीना, इस हाल में कि उन्होंने हमला किया है, बिगैर इज़्निल इमामी, इमाम की इजाजत के बगैर, फअखज़ू शैअन, फिर इन्होंने कोई चीज ले ली, लम युखमस, तो इसमें से खुमुस नहीं लिया जाएगा। भाई मेरी किताब में है लम युखमस, ये मुनासिब नहीं है भाई। खमसा यखमसु का माना होता है माल में से पांचवां हिस्सा लेना, और खम्मसा युखम्मिसु तखमीस अगर बाबे तफ़ईल में हो तो इसका माना होता है माल के पांच हिस्से करना, तो वो माना भी अगर यहां हो जाएगा लम युखम्मस भी, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? लम युखम्मस, के उसमें से खुमुस नहीं निकाला जाएगा। فأخذوا شيئا, انہوں نے کوئی چیز وہاں لے لی, لم يخمص, تو اس میں سے پانچواں حصہ نہیں لیا جائے گا, لأن الغنیمت هو الماخوذ قهرا وغلبة, اس لیے کیونکہ غنیمت وہ مال ہے جس کو لیا گیا ہو, قهرا وغلبة, غلبے کے طور پر, قهرا وغلبة دونوں کا ایک ہی معنی ہے, قهرا کا معنی بھی ہے غلبہ بھائی, تو یہ جو آگے وغلبتن آ رہا ہے یہ عطف تفسیری ہے, اسی قہرن کا معنی بیان فرما رہے ہیں صاحب ہدایا. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْغَنِيمَتَ هُوَ الْمَاخُوذُ قَهْرًا وَغَلَبَتًا, اس لیے کیونکہ غنیمت وہ مال ہے جس کو غلبے کے طور پر لیا گیا ہو, یعنی قوت کے ذریعے لیا گیا ہو, لَاخْتِلَاسًا وَسَرِقَتًا, اختلاس کہتے ہیں کوئی چیز اچک لینا, لوگ غفلت میں ہیں اور ایک آدمی ایک چیز اٹھا کر لے جائے, اس کو کہتے ہیں اختلاس بھائی, اچک لینا. تو کہتے ہیں غنیمت وہ مال ہے جس کو غلبے کے ذریعے لیا جائے, لختلاسا وسرقتا, نہ کہ بطور اچکنے کے یا چوری کے, یعنی جو مال اچک لیا ہے یا چوری کر لیا ہے اس کو مال غنیمت نہیں کہتے. والخمس وظیفتها, اور خمس جو ہے وہ تو غنیمت کا وظیفہ ہے, خمس تو کس میں سے لیتے ہیں, مال غنیمت میں سے لیتے ہیں, اور غنیمت وہ ہے جسے قوت بازو کے ذریعے چھینا جائے بھائی. وَلَوْ دَخَلَ الْوَاحِدُ أَوِ الْإِسْنَانِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ, بھئی اب صورت یہ ہے ایک یا دو مسلمان دار الحرب گئے ہیں لیکن امام کی اجازت سے گئے ہیں, تو کیا یہ جو مال لے کر آئیں اس میں سے خمس نکالا جائے گا؟ تو ایک روایت کے مطابق اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا, اور دوسری روایت کے مطابق اس میں سے خمس نکالا جائے گا, کیونکہ امام کی جب اجازت سے گئے ہیں تو معلوم ہوا امام ان کی مدد کرے گا بھائی. تو کہتے ہیں ولو دخل الواحد او الاثنان باذن الامام, اور اگر ایک یا دو امام کی اجازت سے دار الحرب میں داخل ہو گئے, ففیہ روایتان, تو اس میں دو روایتیں ہیں, والمشہور, اور مشہور روایت یہ ہے کہ انہ یخمس, کہ اس میں سے خمس نکالا جائے گا, لانہ لما اذن لهم الامام, اس لیے کیونکہ جب ان کو امام نے اجازت دے دی, فقد التزم نصرتهم بالامداد, امد یمد امداد کا معنی ہے فوجی کمک پہنچانا, امد یمد امداد کا کیا معنی, فوجی امداد پہنچانا, پیچھے مدد کا لفظ بھی ذکر ہوا تھا, میں نے بتایا تھا مدد جو ہے عربی زبان میں مدد کا معنی مدد کرنا بھی ہے, اور اسی طرح مدد جو ہے فوجی کمک کو بھی کہتے ہیں, یعنی اور مجاہدین مدد کے لیے پہنچے اس کو کیا کہتے ہیں, مدد بھائی. اور امد یمد امداد کا کیا معنی ہے, مدد پہنچانا, یعنی فوجی کمک پہنچانا. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمُ الْإِمَامُ, اس لیے کیونکہ جب امام نے ان کو اجازت دی ہے, فَقَدِ الْتَزَمَ, تو تحقیق امام نے التزام کر لیا ہے, نُصْرَتَهُمْ, ان کی مدد کرنے کا, بِالْإِمْدَادِ, فوجی کمک پہنچانے کے ذریعے, فَصَارَ كَالْمَنَعَتِ, تو یہ بھی لشکر کی طرح ہو گئے کہ ان کے پیچھے مدد پہنچے گی. فَإِن دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ لَهَا مَنَعَةٌ, اب بھائی ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی گئی دار الحرب کے اندر اور ان کو قوت حاصل ہے, یہ جو مال لے کر آئیں گے اس میں سے خمس نکالا جائے گا. کہتے ہیں فَإِن دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ لَهَا مَنَعَةٌ, اگر کوئی ایسی جماعت داخل ہوئی دار الحرب میں کہ ان کو قوت حاصل تھی, فَأَخَذُوا شَيْئًا, پس انہوں نے کوئی چیز لے لی, خمیسا, تو اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا, وَإِن لَمْ يَأْذَن لَهُمُ الْإِمَامُ, اگرچہ امام نے ان کو اجازت نہ دی ہو, لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ قَهْرًا وَغَلَبَةً, اس لیے کیونکہ اس مال کو بطور غلبے کے لیا گیا ہے, فَكَانَ غَنِيمَةً, تو یہ مال جو ہے غنیمت ہوگا, وَلِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَن يَنصُرَهُمْ, بھئی اگرچہ یہ امام کی اجازت کے بغیر گئے ہیں لیکن پھر بھی امام پر واجب ہے ان کی مدد کرنا, اس لیے کیونکہ اگر امام ان کی مدد نہیں کرے گا اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا, یہ تو گویا وہ مسلمانوں کو کمزور کر رہا ہے. تو کہتے ہیں ولی انہ یجب علی الامام ان ینصرہم, اور اس لیے کیونکہ امام پر واجب ہے کہ وہ ان کی مدد کرے, اذ لو خذلہم, خذلہ یخذل کا معنی ہے کسی کی مدد نہ کرنا, یعنی اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. کہتے ہیں اذ لو خذلہم, اس لیے کیونکہ امام جو ہے وہ اگر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا, کان فیہ وہن المسلمین, تو اس میں تو مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے, लिहाजा ये उसके लिए जायज नहीं, उस पर वाजिब है उनकी मदद करे। बेखिलाफ इलवाहिदी वल इस नहीं, बेखिलाफ एक या दो अफराद के, कि अगर एक या दो अफराद गए हैं तो कहते हैं बिखिलाफ इलवाहिदी वल इस नहीं, बखिलाफ एक या दो अफराद के। लिया नहू ला यजिबु अलैहि नुसरतुहुम, इसलिए क्योंकि इमाम पर उनकी मदद करना वाजिब नहीं है। आगे देखिए फसलुन फी तनफील, ये फसल है तनफील के बयान में। मैंने बतलाया था भाई तनफील का क्या माना है, जायद देना, हिस्से से जायद देना। फसलुन फी तनफील, ये फसल है तनफील के बयान में, यानी जायद माल देने के बयान में। قال صاحب قدوری فرماتے ہیں ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ زائد مال دے لڑائی کی حالت میں, امام زائد مال دے لڑائی کی حالت میں۔ اور یاد رکھنا صاحب قدوری کے الفاظ ہیں ولا بأس, اس میں کوئی حرج نہیں, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन याद रखो उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद आदम हर्ज नहीं है, बल्कि इससे मुराद इस्तेहबाब है। इससे मुराद इस्तेहबाब है, क्योंकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मबसूद के अंदर तस्रीह की है कि इमाम का मुजाहिदीन को उभारना यह मुस्तहब है। भाई खुद कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, आगे साहिब हिदायत भी जिक्र फरमाएंगे, या युहन नबी युहर्रिजिल मुमिनीन अलल क़िताल, ए पैगंबर मोमिनीन को किताल पर उभारिए। तो यहां अमर आया हर्रिजिल मोमिनीन, ऐ पैगंबर मोमिनीन को किताल पर उभारिए, और अमर आता है वजूब के लिए। मालूम हुआ मोमिनीन को लड़ाई पर उभारना वाजिब है, लेकिन लड़ाई पर उभारना वो सिर्फ इनाम के जरिए ही उभारना नहीं होता, बल्कि वैसे उनको वाजो नसीहत करना और उनको जिहाद की तरगीब देना और इसी तरह इनाम के जरिए उनको उभारना, जिस तरीके से भी हो मुसलमानों को जिहाद पर उभारा जाएगा। तो मुतलकन उभारना यह तो है वाजिब, क्योंकि हर रिजिल मोमिनीन अमर आया कुरान के अंदर भाई। और अलबत्ता इस उभारने के अंदर एक खास नौ है कि इनाम के वादे के जरिए उनको उभारे, तो वो एक खास नौ है, वो वाजिब नहीं, अलबत्ता वो मुस्तहब है। तो मुतलकन उभारना वाजिब, और खास नौ यानी इनाम के जरिए उभारना यह मुस्तहब है भाई। तो कहते हैं قال صاحب قدوری फरमाते हैं वला بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال, और कोई हरज नहीं है कि इमाम जो है वो زائد माल दे लड़ाई की हालत में। ويحرز على القتال, और कोई हरज नहीं है कि इमाम लड़ाई पर उभारे। يحرز इसका عطف है بأن ينفل पर, तो वो मंसूब था तो ये भी मंसूब। वयुहर्रिज़ा अलल क़िताली, और कोई हरज नहीं कि इमाम लड़ाई पर उभारे। फयकूला इसका भी उसी पर आता है, ये भी मंसूब है। फयकूला तो इमाम कहे मन कतल कतीलन फलहु सलबुहू, जिसने किसी मकतूल को कत्ल किया तो उसके लिए उससे छीना हुआ माल है। सलब, सलब कहते हैं छीना हुआ माल भाई, लाम पर भी फतहा है। और मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु, याद रखो ये हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिहाद के अंदर, मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु, जिसने किसी मकतूल को कत्ल किया तो उसके लिए है उसका छीना हुआ माल, यानी उस मकतूल से छीना हुआ माल वो उसी कत्ल करने वाले को मिलेगा। और यहां आया ममन कतल कतीलन, कतील से मुराद है मकतूल भाई। और मुझे बताइए जिंदा आदमी को कत्ल किया जाता है या मकतूल को कत्ल किया जाता है? जिंदा को कत्ल किया जाता है, लेकिन यहां उस जिंदा आदमी को मकतूल के साथ जिक्र कर दिया गया। इसको कहते हैं मजाज बिल मुशारफा, यानी एक चीज जिस हालत की तरफ लौटने वाली है पहले से ही उसी नाम के साथ उसको जिक्र कर दिया जाए। तो चूंकि ये जो जिंदा हैं ये अब मकतूल होने वाले हैं, तो अभी से इनको मकतूल कह दिया गया। तो हुजूर फरमाते हैं मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु, जिसने किसी मकतूल को कत्ल किया तो उसी के लिए है उसका छीना हुआ माल। ये तो सूरत थी कि इमाम आम ऐलान करता है अफराद में, अफराद में कि जो फर्द जिस मकतूल को कत्ल करेगा उसके लिए उसका सलब होगा। और अगर एक जमात है पूरी उसको इमाम भेज रहा है किसी जगह पर, तो इमाम उनसे कह सकता है कि जो माल गनीमत मिलेगा उसमें से खुमुस निकालने के बाद बाकी जो माल बचेगा उसका चौथा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। पूरे लश्कर में से एक छोटी सी जमात को इमाम किसी तरह भेज रहा है कि यह काम करके आओ, दुश्मन को फला जगह नुकसान पहुंचा के आओ, और कहता है अगर तुम कामयाब लौटे तो जितना माल गनीमत मिलेगा उसमें से खुमस निकालने के बाद जो माल बाकी बचेगा उसका चौथा हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। तो देखो मालूम हुआ एक एक फर्द को भी इमाम उभार सकता है और पूरी जमात को भी उभार सकता है इनाम के जरिए। तो यह माना है वयकूल अली सरियती, और सरिया से यानी मुजाहिदीन के दस्ते से इमाम कहे قد جعلت لكم الربع بعد الخمس कि मैंने तुम्हारे लिए रुबो कर दिया खुमुस के बाद, खुमुस के बाद मैंने तुम्हारे लिए रुबो कर दिया। भाई इधर देखिए कुल माल के पांच हिस्से किए, इसमें से एक खुमुस निकाल लिया, बाकी कितने खुमुस बचे, चार खुमुस बचे, इनमें से एक पूरा खुमुस ये बाकी बच जाने वाले माल का रुबो है। तो ये मुराद है कि बाकी बचने वाले माल का रुबो मैं तुम्हें दूंगा। वयकूल अली सरियती, और ये कि इमाम फौजी दस्ते से कहे कद जाल तुलकुम रुबो आबादल खुमुसी कि खुमुस के बाद रुबो जो है वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। माना हुबादमा रुफी अल खुमुसू, साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं मतन की, मतन में क्या आया قد جعلت لكم الربع بعد الخمس, मैंने तुम्हारे लिए रुबो कर दिया खुमुस के बाद। साहिब हिदाया वजाहत फरमा रहे हैं खुमुस के बाद का माना यह है खुमुस निकालने के बाद जी। कहते हैं माना हु, माना इस कौल का यह है कि बाद अमा रुफी अल खुमुस, बाद इसके कि जब खुमुस निकाल लिया जाए لأن تحريز مندوب إليه, इसलिए क्योंकि उभारना जो है वो मंदूब इले है मुस्तहब है। قال الله تعالى, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं या युहन्नबी युहर्रिज المؤمنين على القتال, ए पैगंबर मोमिनीन को किताल पर उभारिए। वहाजा नौ तहरीज, और ये जो नफल है यानी जायद माल देना ये भी किस्म की तहरीज है। सुम कद यकून तनफील बिमा जकरा, फिर तनफील तो कभी उस तरीके पर होगी जो इमाम कुदूरी ने जिक्र कर दिया। इमाम कुदूरी ने क्या जिक्र किया कि अलग अफराद को उभारना चाहता है तो यूं कह सकता है मन कतल कतीलन फलहू सलबुहू, और पूरे एक दस्ते को उभारना चाहता है तो यूं कह सकता है قد جعلت لكم الربع بعد الخمس, लेकिन इसी तरीके पर तनफील जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके से इमाम उभार सकता है। यूं भी कह सकता है कि खुमुस निकालने के बाद जितना माल बचेगा वो निसफ में तुम्हें दे दूंगा, रुबो नहीं बल्कि निसफ तुम्हें दे दूंगा, तो जिस तरह भी उभारना चाहे। कहते हैं सुम मकद यकून तनफील बीमा जकारा, और फिर कभी कभार तनफील उस तरीके से होगी जो साहिब कुदूरी ने जिक्र फरमाया। वकद यकून भी गैरी ही, और कभी इसके अलावा होगी यानी और भी जो इनाम जिक्र करना चाहे। इल्ला अन्नहु ला यंबगी लिल इमामी, हां एक बात है कहते हैं इमाम के लिए मुनासिब नहीं है कि सारा ही माल उनको दे दे। मुजाहिदीन के एक दस्ते को एक तरफ भेजा इमाम ने और उनको कहता है खुमुस निकालने के बाद जितना भी माल गनीमत हुआ वो सारा मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई इसके अंदर तो बाकियों का हक भी बातिल किया जा रहा है, लिहाजा ये पसंदीदा नहीं। लेकिन कहते हैं अगर इमाम की राय यही है तो इमाम सारी गनीमत भी उनको दे सकता है, क्योंकि बाज औकात मसलहत इसी में होती है। कोई इतना मुश्किल काम है कि उसके बगैर फतह की सूरत नहीं, तो फिर इमाम इस तरह भी कर सकता है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु ला यंबगी लिल इमामी, मगर यह कि इमाम के लिए यह मुनासिब नहीं है अन युनफिल बिकुल्लिल माखूजी कि वो तनफील करे सारे लिए हुए माल के साथ, कि सारा लिया हुआ माल जो यानी सारा माल गनीमत है वो बतौर नफल के बतौर इनाम के दे, ये उसके लिए मुनासिब नहीं। लिअन नफी ही इबताल हक्किल कुल्ली, इसलिए क्योंकि इसके अंदर तमाम गाजियों के हक को बातिल करना है। फइन फअलहु मा सरियति जाजा, लेकिन अगर इमाम ने किसी दस्ते के साथ ऐसा कर दिया जाजा तो ये जायज है कि सारा माल उनको दे दे। लिअन तसर्रुफ इलैही, इसलिए क्योंकि माल गनीमत के अंदर तसर्रुफ इमाम के सुपुर्द है। वकद तकूनुल मसलहतु फीही, और कभी कभार मसलहत इसी में होती है। आगे देखिए वला युनफिलु बाद इहराजिल गनीमति बिदारिल इस्लामी, और इमाम तनफील नहीं कर सकता यानी जायद इनाम नहीं दे सकता बाद इहराजिल गनीमति बिदारिल इस्लामी, दारुल इस्लाम में गनीमत के महफूज करने के बाद जब दारुल इस्लाम में एक दफा माल गनीमत ले आए तो आप जानते हैं गाजी उस माल के मालिक बन जाते हैं, तो अब इमाम उसमें से दूसरों को बतौर इनाम के जायद माल नहीं दे सकता। तो कहते हैं वला युनफिलु बाद इहराजिल गनीमति बिदारिल इस्लामी, और इमाम जो है वो जायद इनाम नहीं दे सकता दारुल इस्लाम में गनीमत के जमा करने के बाद। लअन्न हक्कल गैर कद तअक्कद फीहि बिल इहराजी, इसलिए क्योंकि गैरों का हक इसके अंदर पुख्ता हो गया है इसको महफूज करने की वजह से। काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं इल्ला मिनल खुमुसी, मगर खुमुस में से, खुमुस जो है उसमें से दे सकता है भाई, तवज्जो है, क्योंकि चार खुमुस तो गाजियों का हक है, अगर उसमें से इनाम देगा ये तो इमाम गाजियों के हक को बातिल कर रहा है और इमाम के लिए जायज नहीं है गाजियों के हक को बातिल करे। तो जो खुमुस निकाला जाएगा उसमें से इनाम दे सकता है। इस पर इश्काल होता है कि खुमुस भी तो यतीमों मोहताजों और मुसाफिरों का हक है, तो इसके अंदर भी तो इमाम तसर्रुफ कर रहा है। कहते हैं भाई ये भी उस सूरत में इमाम जायद इनाम दे सकता है जब वो गाजी इन तीन किस्मों में से किसी के अंदर दाखिल हो, यानी वो फकीर है या मोहताज वगैरह है, फिर ही दे सकता है। तो जब वो गाजी खुद फकीर और मोहताज है तो ये तीन अकसाम के अंदर ही दाखिल हुआ भाई, तो इनका भी हक बातिल नहीं होगा। तो कहते हैं इल्ला मिनल खुमुसी, मगर खुमुस में से दे सकता है इमाम। लिअन्नहु ला हक लिल गानिमीन फिल खुमुसी, इसलिए क्योंकि गनीमत वालों का खुमुस के अंदर कोई हक नहीं है। वह इदा लम यजअल सलब लिल कातिली, और जब इमाम ने छीना हुआ माल कातिल के लिए नहीं किया, इमाम ने यह ऐलान नहीं किया कि मकतूल से जो कुछ मिलेगा वह कातिल का होगा, तो अगर ये ऐलान नहीं किया तो फिर ये भी सारा माल गनीमत में ही शुमार होगा और तमाम गाजियों का इसमें हक होगा भाई। तो कहते हैं वह इदा लम यजअलिस सलबा लिल कातिली, और जब इमाम ने छीने हुए माल को कातिल के लिए खास नहीं किया, फहुआ मिन जुमलतिल गनीमती, तो वो सलब जो है वो भी मजमूआए गनीमत में से होगा। वल कातिलु वगैरुहु फी ज़ालिका सवाउन, और कातिल और गैर कातिल उसमें बराबर होंगे। वकाल शाफिई रहमहुल्लाह, और इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अस सलबु लिल कातिली, कि वो छीना हुआ माल कातिल ही के लिए होगा। इजा काना मिन अहली अयुस हमलहू, जब वो उन लोगों में से हो कि जिसमें अहलियत हो कि उसके लिए हिस्सा निकाला जाए। भाई आप पढ़ चुके हैं कि बच्चा है या गुलाम है या औरत है या जिम्मी है, इनके लिए तो हिस्सा नहीं निकाला जाएगा, इनको थोड़ा सा माल दिया जाएगा, तो मालूम हुआ ये अहले सिहाम नहीं। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अगर कातिल अहले सिहाम में से है तो फिर जो कुछ मकतूल के पास है वो सारा इसी कातिल का होगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु, जिसने भी मकतूल को कत्ल किया तो उसका छीना हुआ माल उसी के लिए है भाई। तो कहते हैं वकाल शाफिई रहमुल्ला, और इमाम शाफिई रहमुल्ला फरमाते हैं अस सलब लिल कातिली, के सलब जो है वो कातिल के लिए ही है। इदा कान मिन अहली अयुस हमलहू, जब वो कातिल उन लोगों में से हो के जिसके लिए हिस्सा निकाला जा सकता हो। वकद कतलहू मुकबिलन, इस हाल में कि उस कातिल ने उसको कतल किया हो, मुकबिलन मुतवज्जे होने की हालत में। भाई देखिए एक मुसलमान जिहाद में काफिर को कत्ल करता है, या तो वो काफिर भी इसी की तरह मुतवज्जे था, वो भी लड़ाई कर रहा था, या दूसरी सूरत यह है कि शिकस्त हो गई, अब कुफार भाग रहे हैं, भागते हुए एक काफिर को एक मुसलमान कत्ल करता है, या एक सोया हुआ काफिर है उनमें उसको जाकर मुसलमान कत्ल करता है। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं नहीं, अगर वो काफिर मुतवज्जे है यानी उसका रुख इधर को ही है, वो मुकाबला कर रहा है, उसको कत्ल करेगा तो फिर कातिल को उसका सारा सलब मिलेगा, और अगर इसने भागते हुए काफिर को या सोए हुए काफिर को कत्ल किया है फिर यह सलब इस कातिल के लिए नहीं होगा भाई। ये माना है वकद कतलहू मुकबिलन, और तहकीक इस कातिल ने उस काफिर को कत्ल किया हो मुकबिलन उसके मुतवज्जे होने की हालत में। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, बवजह हुजूर अलैहि सलाम के कौल के, ये इमाम शाफी रहमहुल्लाह की दलील चल रही है, वो फरमाते हैं हुजूर अलैहि सलाम के कौल की वजह से कि मन من قتل قتيلا فله سلبه, کہ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا تو اسی کے لیے ہے اسے چھینا ہوا مال. والظاہر انه نصب شرع, اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جو ہے شریعت نصب کی جا رہی ہے, ظاہر یہی ہے یہ شریعت قائم کی جا رہی ہے. یعنی حضور علیہ السلام ایک شرعی حکم بتلا رہے ہیں, حضور علیہ السلام ایک شرعی حکم بتلا رہے ہیں, من قتل قتیلا فله سلبه, کیونکہ حضور علیہ السلام شرعی احکام بتلانے کے لیے ہی بھیجے گئے تھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والظاہر انہ نصب شرع, اور ظاہر یہی ہے کہ یہ شریعت نصب کی جا رہی ہے, یعنی شرعی حکم دیا جا رہا ہے. لأنہ بعث لہ, اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام کو شرعی احکام قائم کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا تھا. ولأن القاتل مقبلا اکثر غناء, ولأن القاتل مقبلا, اس لیے کیونکہ وہ شخص جو قتل کرنے والا ہے مقبلا, اس کافر کو جو اس کی طرح متوجہ ہے, اکثر غناء, یہ والا قاتل زیادہ ہے غناء کارکردگی کے اعتبار سے. ایک وہ شخص ہے جو بھاگتے ہوئے کافر کو قتل کرتا ہے, اور ایک وہ شخص ہے جو اس طرح متوجہ ہونے والے کافر کو قتل کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس متوجہ کافر کو قتل کرنے والے کی کارکردگی زیادہ ہے, لہذا اس کو سلب ملنا چاہیے. بھائی یہ معنی ہے, کہتے ہیں ولی ان القاتل مقبلا, اس لیے کیونکہ وہ شخص جو قتل کرنے والا ہے متوجہ ہونے والے کافر کو, اکثر غناء, وہ زیادہ ہے کارکردگی کے اعتبار سے, فیختص بسلبه, لہذا یہ اسے چھینے ہوئے مال کے ساتھ خاص ہوگا, یعنی یہ مال اسی قاتل کا ہوگا. اظہارا للتفاوت بینه وبین غیره, تاکہ اس قاتل اور دوسرے قاتل میں فرق ہو جائے. ایک یہ قاتل ہے جو متوجہ ہونے والے کافر کو قتل کرتا ہے, اور ایک وہ قاتل ہے جو بھاگتے ہوئے یا سوئے ہوئے کافر کو قتل کرتا ہے, تاکہ دونوں میں فرق واضح ہو جائے. یہ معنی ہے اظہارا للتفاوت بینہ وبین غیرہ, فرق کو ظاہر کرنے کے لیے اس قاتل میں اور دوسرے قاتل میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ولنا, اب ہماری دلیل آ گئی, ولنا انہ ماخوذ بقوت الجیش, ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مال چھینا گیا ہے یہ لشکر کی قوت کی وجہ سے چھینا گیا ہے. فیکون غنیمتا, تو یہ غنیمت ہوگا. اگر امام نے اعلان نہیں کیا من قتل قتیلا فله سلبه کا, تو پھر اس صورت میں یہ غنیمت میں سے ہوگا, کیونکہ اس نے لشکر کی قوت سے یہ مال چھینا ہے. تو کہتے ہیں ولنا, ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ ماخوذ بقوت الجیشی, کہ یہ مال جو چھینا گیا ہے یہ لشکر کی قوت کی وجہ سے ہے. فیکون غنیمتا, تو یہ غنیمت ہوگا. فیقسم قسمت الغنائم, تو اس کو بھی غنیمتوں کی طرح تقسیم کیا جائے گا. کما نطق به النص, جیسے کہ نص نے اس پر نطق کیا ہے, نص میں جیسے اس کا ذکر ہوا ہے, وہ جو پیچھے آیت گزری بھائی وعلموا انما غنیمتم, تو اس کے اندر مطلقاً غنیمت کا حکم ذکر کیا گیا کہ اس میں سے خمس نکالا جائے گا اور باقی کس کا حصہ ہوگا؟ مجاہدین کا حصہ ہوگا بھائی. وقال علیہ الصلاۃ والسلام لحبیب ابن ابی سلمۃ, بھائی ہدایہ کے نسخوں میں اسی طرح ہے بھائی, شارحین فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے نسخوں میں اسی طرح ہے, حبیب ابن ابی سلمہ, لیکن یہ درست نہیں ہے, یہ حبیب ابن مسلمہ ہے بھائی. یہ اصل میں کیا ہے؟ حبیب ابن مسلمہ. وجہ یہ کہ صحابہ کے اندر اس نام کے صرف ایک ہی صحابی ہیں بھائی, حبیب ابن مسلمہ, تو یہ معلوم ہوا کسی لکھنے والے سے غلطی ہو گئی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وقال علیہ السلام لحبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور حضور علیہ السلام نے حبیب ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لیس لک من سلب قتیلک, کہ نہیں ہے تیرے لیے تیرے مقتول سے چھینا ہوا مال, الا ما طابت به نفس امامک, مگر وہ جو پسند کرے تیرے لیے امام کا نفس, امام کی ذات جو تیرے لیے پسند کرے وہ ہوگا تیرے لیے, تیرے مقتول کا سلب تیرے لیے نہیں ہے. یاد رکھو شارحین اس پر بھی کلام فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا قول نہیں ہے, بلکہ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے. ये हबीब इब्ने मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो, इनको खबर मिली कि कोई हरबी जो है वो सफर पर निकला है बड़ा मालो असबाब लेकर, चुनाचे ये उसके पीछे गए और उसको कत्ल करके उसका सारा मालो असबाब ले आए भाई। तो हज़रत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह जो थे, जो हाकिम थे उस इलाके के, उन्होंने उस माल में से खुमुस निकालना चाहा, तो हज़रत हबीब इब्ने मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हो इनकार फरमाने लगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु, तो ये माल सारा मेरा है। और फिर हज़रत मुआज़ रजी अल्लाह तआला अन्हो भी वहीं पर थे, उनको पता चला, वो तशरीफ लाए और फिर उन्होंने आकर कहा कि लैस लक मिन सलबि कतीलिका इल्ला मा ताबत बिहि नफ्सु इमामिका, कि मक्तूल से छीना हुआ माल तेरे लिए नहीं है बल्कि जो तेरे लिए तेरा इमाम पसंद करे वो है तेरे लिए। तो यह हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, अलबत्ता इसकी असल हुजूर अलैहिस्सलाम ही का कौल है। ये बात उन्होंने किन से सुनी थी? हुजूर अलैहिस्सलाम से ही सुनी थी भाई। तो हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हबीब इब्ने मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया लैस लक मिन सलबि कतीलिका, के तुम्हारे लिए तुम्हारे मकतूल का छीना हुआ माल नहीं है, इल्ला मा ताबत बिही नफ्सु इमामिका, मगर वो जो तुम्हारे लिए तुम्हारे इमाम की जात पसंद कर ले, वमा रवाहु यहतमिलु नस्ब अश्शरई व यहतमिलु तनफीला, और वो हदीस जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत फरमाया वो नस्ब शरीयत का इहतमाल भी रखती है और तनफील का इहतमाल भी रखती है। हम कहते हैं कि वो जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाया था मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु, इसमें यह भी एहतमाल है कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक शरई हुक्म बयान फरमा रहे हों हमेशा के लिए, और यह भी हो सकता है कि वहां उस खास मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम इनाम का ऐलान फरमा रहे हों, तो इसमें दोनों एहतमाल हैं भाई। तो कहते हैं वमा रवा हु यहतमिलु नस्ब अश्शरई, और वो हदीस जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिवायत फरमाया वो शरीयत नसब करने का इहतमाल भी रखती है, यानी शरई हुक्म बतलाया जा रहा है, वह यहतमिलु तनफीला, और तनफील का इहतमाल भी रखती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जायद इनाम का ऐलान फरमा रहे हैं, फनहमिलुहु अलस्सानी, तो हम इसको दूसरी सूरत पर महमूल करते हैं यानी तनफील पर, लिमा रवई ना हो, उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी, यानी ये जो हजरत हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस अभी जिक्र हुई भाई, बात समझ में आ गई। इस पर इश्काल होता है भाई कि ये जो हजरत हबीब ने मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस है ये हदीस ज़ईफ है भाई, ये हदीस ज़ईफ है, लिहाजा इसको बतौर दलील के जिक्र नहीं किया जा सकता। तो उलमा जवाब देते हैं कि इस हदीस को अहनाफ का मजहब साबित करने के लिए पेश नहीं किया जा रहा, बल्कि इसके जरिए हुजूर अलैहिस्सलाम के कौल में जो दो एहतमाल थे, एक तनफील वाला एहतमाल था और एक शरई हुक्म होने का एहतमाल था, तो उस एक एहतमाल को तरजीह देने के लिए हमने यह हदीस जिक्र की है। बात समझ में आ गई, तो हमने इसको तनफील पर महमूल कर लिया और इस सूरत में देखो दोनों हदीसों पर अमल हो गया, मन कतल कतीलन फलहु सलबुहु पर भी अमल हो गया, मन वो इसके अंदर भी हुजूर अलैहिस्सलाम जायद इनाम का ऐलान फरमा रहे हैं और हज़रत हबीब इब्ने मसलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पर भी अमल हो गया भाई। तो कहते हैं फनहमिलुहु अलस्सानी लिमा रवैनाहु, तो हम इस हदीस को महमूल करते हैं उस दूसरी वजह पर यानी तनफील पर, लिमा रवैनाहु उस हदीस की वजह से जो हमने रिवायत कर दी, व ज़ियादतुल गना इला युअतबरु फी जिन्सिन वाहिदिन कमा ज़करनाहु, व ज़ियादतुल गनाई और कारकर्दगी का ज्यादा होना, ला युअतबरु फी जिन्सिन वाहिदिन एक जिन्स के अंदर यह मुअतबर नहीं है, कमा ज़करनाहु जैसे हमने जिक्र कर दिया, हमने जिक्र कर दिया पीछे कि जैसे कर और फर क्या है एक ही जिंस, तो एक जिंस के अंदर कारकर्दगी का ज्यादा होना मुअतबर नहीं है, यानी काफिर को कत्ल करने वाला चाहे काफिर मुकबिल को कत्ल करे चाहे सोए हुए या भागे हुए को कत्ल करे, बहरहाल काफिरों को क्या कर रहा है कत्ल कर रहा है, तो एक जिंस के अंदर कारकर्दगी का ज्यादा होना मुअतबर नहीं है भाई। तो कहते हैं वज़ियादतुल गना इला युअतबरु फी जिन्सिन वाहिदिन और कारकर्दगी का ज्यादा होना एक जिन्स के अंदर मुअतबर नहीं है, कमा ज़करनाहु जैसे कि हमने जिक्र कर दिया, वस्सलबु मा अलल मक्तूल मिन सियाबिही वसिलाहिही वमरकबुहु, अब भाई बतला रहे हैं सलब कहते किसको हैं, आपको बतलाएंगे कि मकतूल के बदन पर जो उसके कपड़े हैं, जो उसका असलहा है, जो उसकी सवारी है, सवारी के साथ अगर उसने कोई थैला बांधा हुआ है उसमें कोई सामान है, या इसी तरह उस मकतूल ने खुद अपनी कमर के साथ कोई थैली बांधी हुई है और उसके अंदर माल वगैरह है, तो इस सलब में यह सारी चीजें दाखिल हैं। लेकिन इसके अलावा और चीजें दाखिल नहीं। मसलन इसी मकतूल का एक गुलाम भी है, वो भी लड़ रहा है, तो ये उस मकतूल का जो गुलाम है वो इस सलब के अंदर दाखिल नहीं है। तो कहते हैं वह सलब उमा अलल मकतूली, सलब जो है वो है जो मकतूल पर है, मिन सिया बिही व सिलाही, यानी उसके कपड़े और उसका असलहा, व मरकबुहू, ये मरकबुहू इस पर रफा पड़ेंगे भाई, इस पर रफा पड़ेंगे, इसका आतफ है मां पर भाई, मां। वह सलबू मा अलल मकतूली व मरकबुहू, सलब क्या है, वो जो मकतूल के ऊपर है और जो इसकी सवारी है भाई। तो कहते हैं वह सलब उमा अलल मकतूली, सलब वो चीज है जो मकतूल पर है, मीन सिया बिही व सिलाही, यानी उसके कपड़े और उसका असलहा, व मरकबुहू और उसकी सवारी, व कदा माकान अला मरकबिही मीना सरजी वल आलती, और इसी तरह वो जो उसकी सवारी पर है, मीना सरजी यानी जीन, घोड़े पर जीन लदी होती है वो, वल आलती, और इसी तरह उसके जो आलात हैं यानी लगाम वगैरह, ये सब किस में दाखिल हैं, सलब के अंदर। तो कहते हैं वह कजा माका नाला मर कभी ही, और इसी तरह जो कुछ उस मकतूल की सवारी पर है, मीना सर जीवल आलती यानी जीन, और जीन का आला यानी लगाम वगैरह, वह कजा मा माहू अलद्दा बती मिन माली ही फी हकीबती ही, हकीबा कहते हैं थैले को, वह कजा मा माहू अलद्दाबती, और इसी तरह वो चीज जो उस मकतूल के साथ थी उसके सवारी के जानवर पर, मिम माली ही यानी कि उसका माल, फी हकीबती ही उसके थैली में, उस घोड़े के साथ कोई थैला है उसमें उसने माल वगैरह रखा हुआ था कुछ, तो वो भी सलब के अंदर दाखिल है भाई। फिर तर्जमा देख लीजिए, वह कदा मा माहू अलद्दाबती, और इसी तरह जो कुछ मकतूल के साथ है उसकी सवारी पर, मिम माली ही फी हकीबती ही यानी उसका माल जो उसके थैले में है, औ अला वसती ही या वो माल जो उसके वसत में है, वसत दरमियान को कहते हैं, यानी उसने अपनी कमर के साथ कोई माल बांधा हुआ है, औ अला वसती ही या जो उसके वसत में है यानी कोई थैली वगैरह और उसमें माल है, वह मा अदा जाली का फलई सभी सलबिन, और इसके अलावा जो है वो सलब नहीं है, वह मा का न मा गुलामी ही अला दाबतिन उखरा, और जो कुछ इस मकतूल के गुलाम के पास है दूसरे सवारी के जानवर पर, फलई सभी सलबी ही वो इसका सलब नहीं है। बात समझ में आ गई। सुम हुक्म तनफील कत हक इल बाकीना, अच्छा भाई तनफील का हुक्म क्या है, इमाम ने ऐलान कर दिया तो क्या वहीं दारुल हर्ब में ही वो शख्स उस जायद का मालिक बन जाएगा, कहते हैं नहीं, सिर्फ बाकियों का हक उस चीज से कट जाएगा, बाकी गाजियों का हक उस माल से खत्म हो जाएगा, जबकि ये जिसको इनाम देने का ऐलान किया है इमाम ने, ये इसका मालिक अभी भी नहीं बना, जब इस माल को दारुल इस्लाम लाया जाएगा उसके बाद ये नफल का ये शख्स मालिक बनेगा। कहते हैं सुम हुक्म तनफील कत हक इल बाकीना, फिर तनफील का जो हुक्म है वो बाकियों के हक को कता करना है, यानी बाकियों का हक खत्म हो जाता है, फअम्मल मिल्कु बाकी उसकी मिल्कियत जो है, फइन नमा यसबुतु बादल इहराज भी दारुल इस्लामी, तो वो दारुल इस्लाम के अंदर महफूज करने के बाद साबित होगी, लिमा मर्रा मिन कब्ल, उस वजह से जो माकबल में गुजर गए, उस वजह से जो माकबल में बात गुजर गई कि इस्तीला की वजह से मालिक बनेगा, और इस्तीला दो किस्म पर है, एक यद हाफिजा और एक यद नाकिला, और इस वक्त दारुल हर्ब में यद हाफिजा तो है, यद नाकिला यानी हर किस्म के तसर्रुफ वाला कब्जा अभी नहीं, वो दारुल इस्लाम में होगा। तो कहते हैं लिमा मर्रा मिन कब्ल, उस वजह से जो माकबल में बात गुजर गई, हत्ता लव काल अल इमामु, यहां तक कि अगर इमाम ने कहा, मन असाब जारियतन फहिया लहू, कि जिसको कोई बांदी मिल गई, फहिया लहू तो ये उसी की है, फअसाबहा मुस्लिमुन, तो एक मुसलमान को एक बांदी मिल गई, वस्ताबरा आहा, और इसने उस मुसलमान ने उसी दारुल हर्ब में ही बांदी से इस्तिबरा भी करवा लिया। मैंने आपको बतलाया था इस्तिबरा इसे कहते हैं कि एक हैज तक इंतजार किया जाए, कि बांदी को एक हैज आ जाए ताकि पता चल जाए कि यह हामिला नहीं है। तो कहते हैं फसा बहा मुस्लिम, तो एक बांदी को एक मुसलमान ने पा लिया, वस्ताबरा आहा, और उसने उसका इस्तेबरा भी करवा लिया, एक हैज का इंतजार भी कर लिया, तो भी लम यहिल लहू वत उहा, इस मुसलमान के लिए इसे वती हलाल नहीं है, क्योंकि यह अभी उसका मालिक नहीं बना जब तक दारुल इस्लाम नहीं ले जाता। तो कहते हैं लम यहिल लहू वत उहा, इसके लिए उसे वती हलाल नहीं है, वह कदा ला यबी उहा, और इसी तरह यह उसको बेच भी नहीं सकता। वहां दा इंदा अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्ला, और यह शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक है, शेखैन रहिमहुमल्ला के नजदीक वो जो जायद इनाम जिसका इमाम ने ऐलान किया था, तो जब तक दारुल हर्ब में है वो शख्स अभी भी उसका मालिक नहीं है। हां, जब दारुल इस्लाम इसको वो निकाल कर ले जाएंगे फिर वो शख्स उस इनाम का मालिक बन जाएगा। तो कहते हैं वहादा इंद अबी हनीफत व अबी यूसुफ रहिमहुमल्लाह ताला, और ये शेखैन रहिमहुमल्लाह के नजदीक है। वकाल मुहम्मद रहिमहुल्लाह ताला लहू अन यतअहा व यबीअहा, जबकि इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस शख्स के लिए उस बांदी से वती भी जायज है और ये उसको बेच भी सकता है। भाई इमाम ने ये इनाम के तौर पर ऐलान किया था, ये नफल है, ये इनाम है, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक दारुल हर्ब के अंदर ही वो शख्स उस इनाम का मालिक बन जाता है। तो लिहाजा ये शख्स जिसको बांदी मिली है और इमाम ने ऐलान किया था कि जिसको बांदी मिल गई वही उसका मालिक है, तो ये शख्स दारुल हर्ब में ही इस बांदी का मालिक बन गया, लिहाजा इसके लिए इस बांदी से इस्तिबरा के बाद वती भी जायज है और इसके लिए उस बांदी को बेचना भी जायज है। भाई तो कहते हैं वकाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं लहू अन यतअहा व यबीअहा, कि इस आदमी के लिए जायज है कि इस बांदी से यह वती कर सकता है और इसे बेच सकता है। लिअन्न तनफील यसबुतु बिहिल मिल्क इंदहू, इसलिए क्योंकि तनफील जो है इसके जरिए मिल्कियत साबित हो जाती है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह का मजहब क्या है कि तनफील की वजह से दारुल हर्ब में ही मिल्कियत साबित हो जाती है। तो कहते हैं लिअन्न तनफील यसबुतु बिहिल मिल्क इंदहू, इसलिए क्योंकि तनफील जो है इसकी वजह से मिल्कियत साबित हो जाती है। इंदहू ए इंदा मोहम्मद रहिमहुल्लाह ताला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक कमा यसबुतु बिल किस्मत फी दारिल हर्बी व बिशिरा मिनल हर्बी। ये भाई जैसे आप जानते हैं, आपको साहिब हिदायत ने पीछे बतलाया था कि मुसलमान माले गनीमत के मालिक तीन सूरतों में बन सकते हैं। एक सूरत तो यह है कि वो माल जब मुसलमान दारुल इस्लाम में ले जाएंगे और महफूज कर लेंगे तो गाजी उस माल के मालिक बन जाएंगे, और दूसरी सूरत यह है कि इमाम वहीं पर हाजत और जरूरत की वजह से इस माल को तमाम गाजियों में तकसीम कर दे। तो जब तमाम गाजियों में तकसीम कर दिया तो इस सूरत में भी ये गाजी इस माल के, इस माले गनीमत के मालिक बन जाते हैं। और तीसरी सूरत ये जिक्र की थी कि अगर इमाम जरूरत और हाजत की वजह से इस माल को दारुल हर्ब में ही बेच देता है तो इस सूरत में भी गाजी उस माल के मालिक बन जाएंगे, इसलिए क्योंकि बेचना यह मिल्कियत का हुक्म है। किसी चीज को तभी बेचा जा सकता है जब इंसान उसका मालिक बन जाए। भाई बात समझ में आ गई। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जो नफल है, वो जो इनाम है, गाजी वहीं दारुल हर्ब में ही इसका मालिक बन जाता है। जैसे इमाम तमाम गाजियों के अंदर माल तकसीम करे तो तमाम गाजी उसके मालिक बन जाते हैं, या जैसे हर्बी से किसी चीज को खरीदा जाए दारुल हर्ब में तो खरीदार उसका मालिक बन जाता है। तो यहां पर भी वो जो नफल है, वो जो इनाम है, दारुल हर्ब में ही वो शख्स उस इनाम का मालिक बन जाएगा। तो ये माना है कमा यसबुतु बिल किस्मत फी दारिल हर्बी, जैसे कि दारुल हर्ब में ही मिल्कियत साबित हो जाती है तकसीम की वजह से। व बिशिरा मिनल हर्बी, ये और जैसे दारुल हर्ब में ही मिल्कियत साबित हो जाती है हर्बी से कोई चीज खरीदने की वजह से। वह वजूबु जमान बिल इतलाफी कद कीला अला हादल इख्तिलाफ, ये एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। भाई एतराज यह होता है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने ज्यादात के अंदर यह मसला जिक्र फरमाया है कि अगर ये जो जायद इनाम जिसका ऐलान इमाम ने किया था, मसलन किसी के हाथ बांधी आ गई तो वो उसका मालिक है, या मन कतल कतीलन फलहू सलबहू, जिसने किसी काफिर को कतल किया तो उसका उसका सलब उसे छीना हुआ माल उसी के लिए है। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ज्यादात में जिक्र फरमाते हैं कि अगर दारुल हर्ब के अंदर ही किसी ने वो जो नफल इनाम जो था उसको तलफ कर दिया, उसको हलाक कर दिया, तो उस शख्स पर जमान आएगा
जी।
जिसने वो उस बांदी को कत्ल किया है उस पर जमान आएगा। वो शख्स जो इस बांदी का हकदार था, जिसको इमाम ने इनाम के तौर पर इस बांदी का मालिक करार दिया था, तो अगर किसी ने मसलन उस इनाम को हलाक कर दिया या जैसे वो बांदी थी उसको हलाक कर दिया, तो जिसका इनाम बनता था तो इस तलफ करने वाले को जमान देना पड़ेगा उस इनाम वाले को
जी।
बात समझ में आ गए। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने यह मसला ज्यादात में जिक्र फरमाया है और ये वहां उन्होंने इख्तिलाफ जिक्र नहीं फरमाया इस मसले में। यहां तो जिक्र किया साहिबे हिदाया ने कि शेखैन रहमहुमल्ला के नजदीक ये इनाम जब दारुल इस्लाम मुंतकिल किया जाएगा फिर ये शख्स इसका मालिक बनेगा, और इमाम मोहम्मद रहमहुमल्ला फरमाते हैं नहीं, दारुल हर्ब में ही ये इनाम वाला इस इनाम का मालिक बन जाएगा। तो यहां तो साहिब हिदाया ने इख्तिलाफ जिक्र किया लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने ज्यादात में यह इख्तिलाफ जिक्र नहीं किया, मुतलकन इतना जिक्र किया है कि अगर दारुल हर्ब में ही कोई इस इनाम को तलफ कर दे, हलाक कर दे, तो उस पर जमान आएगा। तो ज्यादात की इस इबारत से पता चला कि यह मसला हमारे तीनों अइमा के नजदीक है क्योंकि वहां इख्तिलाफ जिक्र नहीं, और जब ये तीनों अइमा के नजदीक है कि उस पर जमान आएगा, और जमान तो तब आता है किसी शख्स पर जब वो किसी का ममलूका माल हलाक कर दे, मालूम हुआ दारुल हर्ब में ही वो इनाम वाला इस माल का मालिक बन चुका है, जब भी तो दूसरे हलाक करने वाले पर जमान आ रहा है, वैसे तो उस पर जमान नहीं आ सकता। तो ज्यादात के मसले से मालूम हो रहा है कि शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक भी दारुल हर्ब के अंदर ही वो इनाम वाला गाजी उस इनाम का मालिक बन चुका है, इसीलिए तो जमान आएगा, वरना तो जमान ना आता। तो उसका जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया कि जमान के वाजिब होने का जो मसला है उसके अंदर भी कहा गया है कि इसी तरह इख्तिलाफ है। इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने तो ज्यादात में जिक्र नहीं फरमाया लेकिन शेखैन रहमहुल्लाह के नजदीक उसमें जमान नहीं आया क्योंकि अभी तक इनाम वाला उसका मालिक नहीं बना दारुल हर्ब में, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक वो मालिक बन चुका है, लिहाजा उनके नजदीक जमान आएगा। मालूम हुआ जमान के वाजिब होने के मसले में भी इसी तरह इख्तिलाफ है भाई। तो कहते हैं वबुजूबु जमान बिल इतलाफी कद कीला अला हादल इख्तिलाफ, वजूबु जमान बिल इतलाफी, और जमान का वाजिब होना उस इनाम को तलफ कर देने की वजह से कद कील तहकी कहा गया है अला हादल इख्तिलाफी, वो भी इसी इख्तिलाफ पर है। इनाम को तलफ कर देने की वजह से जमान का वाजिब होना कद कीला अला हादल इख्तिलाफी, तहकीक कहा गया है वो भी इसी इख्तिलाफ पर है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक जमान आएगा और शेखैन रहमहुमल्लाह के नजदीक जमान नहीं आएगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।